कार्यद्रव्याणाम् उत्पत्ति विनाश क्रमः तत्र प्रतिज्ञादीनां चतुर्णां कार्यद्रव्याणाम् उत्पत्ति विनाश क्रमः कथ्यते। द्वयोः परमाणवोः क्रियया संयोगे सति द्वणुकम् उत्पद्यते, तस्य परमाणु समवायि कारणम्, तत्संयोगो असमवायि कारणम्, अध्यस्तादि निमित्त कारणम्, ततो द्वणुकानां त्रयाणां क्रिया संयोगे सति त्रणुकम् उत्पद्यते, तस्य द्वणुकानि समवायि कारणम् शेषं पुरवत् एवं त्रणुकश्चतुर्भिः चतुर्णुकम् चतुर्णुकैरपरम् स्थूलतरम् तैरपरम् स्थूलतमम् एवं क्रमेण महापृथ्वी महस्य आपो महस्तेजो महस्य वायु उत्पद्यते। कार्यगता रूपादया स्वाश्रय समवायि कारण गतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते, कारण गुणा ही कार्य गुणा नारमते इति न्यायात्। इत्थम् उत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य घटादेरवयवेषु कपालादिषु नोदनाद् भिघातात् द्वा क्रिया जायते, तया द्विभागास्ते नावेव व्यारम्भकस्य समवायि कारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते। ततः कार्यद्रव्यस्य घटादिर अवयविनो नाशः एतेनावेव रम्भका समवायि कारणनाशे द्रव्यनाशो दर्शितः। क्वचित् समवायि कारणनाशे द्रव्यनाशो यथा पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्यादे संहारे संजिहीर्षोर्महेश्वरस्य संजिहीर्षा जायते, ततो द्वणुकारम्भकेषु परमाणुषु क्रिया तया विभागः ततस्तयो संयोगनाशे सति द्वणुकेषु नष्टेषु स्वाश्रय नाशात् त्रणुकादिनाशः एवं क्रमेण पृथिव्यादिनाशः यथा वा तन्तूनां नाशे पटनाशः तद्गतानां रूपादीनां स्वाश्रय नाशे नैव नाशः। अन्यत्र तु शक्येवाश्रय विरोधि गुण प्रादुर्भावेण विनाशः यथा पाक्येन घटादौ रूपादि नाश इति। किं पुनः परमाणुसत्त्वे प्रमाणम् उच्यते, यदिदं जालतुल्यमरीचिष्टं सर्वतः सूक्ष्मतमं रज उपलभ्यते तत् सर्वपरिमाण द्रव्यारब्ध कार्यदुर्गत्वात् घटवत् तस्य द्रव्यं कार्यमेव महद्द्रव्यारम्भकस्य कार्य नियमात् तदेव जणुकाख्यं द्रव्यं सिद्धं, तदपि स्वल्प परिमाण समवायि कारणारब्धं कार्यदुर्गत्वात् घटवत् यस्तु जणुकारम्भकः स एव परमाणुः सचानर्थ एवेति। ननु कार्यद्रव्यारम्भकस्य कार्यदुर्गत्वात् व्यभिचारात् तस्य कथम् नारब्धत्वम् उच्यते। अनंत कार्य परंपरा दोष प्रसंगात् तथा सति अनंत द्रव्यारब्धत्व विशेषेण मेरु सर्पयोरपि तुल्य परमाणुत्व प्रसंग माद्नारब्ध एव परमाणु द्रणुकम् तु द्रव्यारमेव परमाणुभ्याम् आरभ्यत् एकस्यानारम्भकत्वात् त्रयादिकल्पनायां प्रमाणाभावात् द्रणुकम् तु त्रिभिरेव द्रणुकैरारभ्यत् एकस्यानारम्भकत्वात् द्वाभ्यारम्भे कार्यगुणमहत्त्वानुपत्ति प्रसंगात् कार्ये हि महत्त्वं कारणमहत्त्वात् वा कारणबाहुत्वात् वा तत्र प्रथमस्यासम्भवाच्च रममेषितव्यम्, न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव महत्त्वारम्भोपत्तेरिति शब्दगुणकमाकाशम् शब्द संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग वत् एकम् विभु नित्यम् च शब्दलिङ्गकम् च शब्दलिङ्गकत्वमस्य कथम् परिशेषात् शब्दप्रत्ययदेऽन्तरासङ्गात् परिशिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः तथा हि शब्दस्तावत् विशेषगुणः सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादि बाह्येकैकेन्द्रग्राह्यत्वात् रूपादिवत् गुणश्च गुण्यास्त एव, न चास्य पृथिव्याचतुष्टयमात्मा च गुणी भवितुमर्हति। श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दस्य ये हि पृथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यन्ते यथा रूपादयः, शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते अतो न तेषां गुणः, न च तिक्कालमनसां गुणः शेषगुणत्वात्। अत एभ्यो स्तेभ्यो युक्तः सप्त गुणी एषितव्यः स एव आकाश इति तदेको भेदे प्रमाणभावादेकत्वे नैवोपपत्तेः एकत्वाच्चाकाशत्वम् नाम सामान्यमाकाशे न विद्यते सामान्यस्यानेकवृत्तित्वात् विभूचाकाशम् महत्परिमाण वदित्यर्थ सर्वत्र तत्कार्योपलब्धे अस्तु एव विभुत्वान् नित्यम् इति कालोऽपि दिग्विपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागवान् एको नित्यो विभुश्च कथमच्च दिग्विपरीतपरत्वापरत्वानुमेयत्वम् उच्यते तन्निर्दे वृत्ते सन्निधानात् परत्वार्हे तद्विपरीतत्वम् परत्वम् प्रतीयते द्वैते न्यूनव्यवधानात् परत्वार्हे तद्विपरीतमपरत्वम् तदिदम् तत्तद्विपरीतम् परत्वमपरत्वम् च कार्यम् तत्कारणस्य दिगादेरसम्भवात् कालमेव कारणमनुमापयति स च कोऽपि वर्तमानातीत् भविष्यत्क्रियोपाधिवशात् वर्तमानादिप्रदेशम् लभते पुरुष एव पश्चादिकीयोपाधिवशात् पाचक पाठकादिप्रदेशम् नित्यत्व विभुत्वे चास्य पुरोवत् काल विपरीत परत्वापरत्वानुमेयात् दिग् एका नित्या विविच संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग गुणवती पूर्वादित्येरनुमेया तेषाम् अन्य निमित्ता सम्भवात् पूर्वमस्मिन् पश्चिमे वा देशे तस्य वसुनस्तादवशात् तथैको सवितुस्तद्देश संयोगे पादिवशात् प्राच्यादि संज्ञा लभते आत्मत्वादि सम्बन्धान् आत्मा सुख दुःखादि वैचित्र्यात् तच्छरीरम् भिन्नः तचोक्त एव तस्य सामान्य गुणा संख्यादयः पञ्च उच्चादयो नव विशेष गुणाः नित्यत्व विवृत्ते पूर्ववत् मनस्त्वाभि सम्बन्धवान् मनः अणु आत्मसंयोगी अन्तरिन्द्रियम् सुखादुपलब्धिकरणम् नित्यम् च संख्याद्यष्टु गुणवत् तत्संयोगेन बाह्येन्द्रियमर्थग्राहकम् अत एव सर्वोपलब्धि साधनम् तच्च न प्रत्यक्षम् अपि त्वनुमानगम्यम् तथा खाद्योपलब्धेः चक्षुराद्यतिरिक्त करणसाध्याः अथत्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात् प्रकटमिच्छिदावत् यद्वस्तु यद्वि नैवोत्पद्यते तत्तदातिरिक्त करणसाध्यम् यथा कुठारम् विनोत्पद्यमाना पचनक्रिया तदातिरिक्त वाण्यादि करणसाध्या यच्च करणम् तन्मनः तच्च चक्षुराद्यतिरिक्तम् तच्च अणुपरिमाणम् इति द्रव्याण्यनुक्त्यानि गुणाः अथ गुणाः उच्यन्ते सामान्यमान असमवायि कारणम् अस्पन्दात्मा गुणः तच्च द्रव्याश्रिता एव रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्वत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मादन संस्कार वेदा चतुर्विंशतिधा तत्र रूपम् चक्षुर्मात्रकायो विशेष गुणः पृथिव्यादित्रय वृत्ति तच्च शुक्लाब्दनेक प्रकारकम् काकजम् च पृथिव्याम् तच्चा नित्यम् पृथ्वीमात्रे अप्यतैजस परमाणवोर्नित्यम् अप्यतैजस कार्येषु नित्यम् शुक्लभास्वम पाकजम् तेजसि तदेव भास्वरमप्सु रसो रसनेन्द्रियग्राह्यो गुण विशेषः पृथ्वीजलवृत्तिः तत्र पृथिव्याम् मधुरादि षट्प्रकारो मधुर अम्ल लवण कर्कषा इत्युक्त वेदात् पाकजश्च अप्सु मधुरोपाकजो नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुभूतास्तु कार्यास्तु नित्यः गन्ध घ्राणग्राह्यो विशेष गुण पृथ्वीमात्रवृत्तिः अनित्य एव सुरभिश्च रादौ गन्ध प्रतिमानम् तु संयुक्त समवायम् द्रष्टव्यम् स्पर्शः गमेन्द्रियमात्रगायो विशेष गुणः प्रतिज्ञा चतुष्टय वृत्तिः स्वचतुर्विधः शीतोष्णा मिथुना शीत वेदा सीता पयसी उष्ण सीता पृथ्वी वायु प्रतिज्ञाम पाकज सैवा पाकजो वायु पृथ्वी मात्रे नित्य अप्यतैजस वायवीय परमाणुष नित्य अप्यारी कार्येषु नित्य एते च रूपादे चत्वारो मात्रैकाल सम्यतस्ते सच्चुद्भूता इव प्रत्यक्षाः संचा एकत्वादि व्यवहार हेतु सामान्य गुणः एकत्वादि प्राग पर्यन्ता तत्रैकत्वं द्विविधं नित्यानित्य वेदात् नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतं नित्यम् स्वाश्रय समवाय कारण गतैकत्वं जन्यम् च द्वित्वादि चानित्यमेव तत्र द्वित्वं च द्वयोः पिण्डयोः इदमेकम् इदमेकम् इत्यापेक्षा बुद्ध्या जन्यन्ते तत्र द्वौ पिण्डौ समवायि कारणे पिण्डयोरेकत्वे असमवायि कारणे अपेक्षा बुद्धिर्निवृत्त कारणम् अपेक्षा बुद्धिनाशादेव द्वित्व विनाशः एवं ಸಂಖ್ಯಾಕಾರಣಕಮಿತ್ಯರ್ಥ ತ್ರಣುಕ ಪರಿಮಾಣ ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣಗಳ ಬಹುತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆಯೋನಿ ಚತುರ್ಣುಕಾದಿ ಪರಿಮಾಣ ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಪರಿಮಾಣ ಜನ್ಯಂ ಸ್ಥೂಲಪಿಂಡ ಪರಿಮಾಣ ಸ್ವಾಶ್ರಯ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಭಯವಾನಾಂ ಸಶಿಥಿಲ ಸಂಯೋಗ ಜನ್ಯಂ ಪರಮಾಣು ಪರಿಮಾಣ ಪರಂ ಮಹತ್ ಪರಿಮಾಣ ಚಾಕಾಧಾರಿಗತ ನಿತ್ಯಮೇವ ಪೃಥಕ್ತಂ ಪೃಥಕ್ ವ್ಯವಹಾರಣ ಕಾರಣ ಕರಣ ತಚ್ಚ ದಿವಿಧಂ ಏಕ ಪೃಥಕ್ತಂ ದಿಪೃಥಕ್ತ್ವಾದಿಕಂ ಚ ತತ್ರಾದ್ಯಂ ನಿತ್ಯಗತಂ ನಿತ್ಯಂ ಅನಿತ್ಯಗತಂ ಅನಿತ್ಯಂ ದಿಪೃಥಕ್ತ್ವಾದಿಕಂ ಚ ನಿತ್ಯಮೇವ ಸಂಯೋಗಃ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇತುರ್ಗುಣಃ ಸ ಗೃಹಾಸ್ಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ತದ್ವಿಧ ಅನ್ಯತರ ಕರ್ಮಜ ಉಭಯ ಕರ್ಮಜ ಸಂಯೋಗಜ ಚೇತಿ ತತ್ರಾಂತರ ಕರ್ಮಜೋ ಯಥಾ ಕಿಯೌತಾ ಶ್ಯನೇನ ಸ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಸ್ಥಾಣೋ ಸಂಯೋಗ ಅಸ್ಯ ಹಿ ಶ್ವೇತಕ್ರಿಯಾ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣಂ ಉಭಯ ಕರ್ಮಜೋ ಯಥಾ ಚಕ್ರಿಯೋ ಮಲ್ಲಯೋ ಸಂಯೋಗ ಸಂಯೋಗಜೋ ಯಥಾ ಕಾರಣಾಕಾರಣ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ ಸಂಯೋಗ ಯಥಾ ಹಸ್ತಕರ ಸಂಯೋಗೇನ ಕಾಯಕರ ಸಂಯೋಗ ವಿಭಾಗೋಪಿ ವಿಭಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇತು ಸಂಯೋಗಪೂರ್ವಕೋ ದಯಾಶ್ರಯಃ ಸಚ ತ್ರಿವಿಧೋನ್ಯತರ ಕರ್ಮಜ ಉಭಯ ಕರ್ಮಜೋ ವಿಭಾಗಜಶ್ಯತಿ ತತ್ರ ಪ್ರಥಮೋ ಯಥಾ ಶ್ಯೇನ ಕ್ರಿಯಾ ಶೈಲಶ್ಯೇನಯೋರ್ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯೋ ಯಥಾ ಮಲ್ಯೋರ್ ವಿಭಾಗ ತೃತೀಯೋ ಯಥಾ ಹಸ್ತರ್ ವಿಭಾಗ ಕಾಯಕರ್ ವಿಭಾಗ ಪರಾಪರತ್ವೇ ಪರಾಪರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣೆ ತೇಸು ತ್ರಿವಿಧೇ ದಿಕ್ಕತೆ ಕಾಲಕೃತೆ ಚ ತತ್ರ ದಿಕ್ಕೃತಯೋರುತ್ಪತ್ತಿ ಕಥ್ಯತೆ ಏಕಸ್ಯಾಂ ದಿಸ್ಯೋ ಪಿಂಡಯೋ ಇದಮಸ್ಮಾತ್ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಂ ಇತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾನುಗ್ರಹೀತೇನ ದಿಕ್ಪಿಂಡ ಸಂಯೋಗೇನಾಪರತ್ವಂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟೇ ಜನ್ಯತೆ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ತು ಪರತ್ವಂ ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟೇ ಜನ್ಯತೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಥಸ್ತು ಪಿಂಡಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟು ಶರೀರಾಪೇಕ್ಷ ಸಂಯುಕ್ತಯೋಗಾಲ್ಪೀಯಸ್ತಂ ತದ್ಭೂಯಸ್ತಂ ವಿಪ್ರಕರ್ಷ ಇತಿ ಕಾಲಕೃತಿಯೋಸ್ತು ಪರತ್ವಾಪರತ್ಯೋರುತ್ಪತ್ತಿ ಕಥ್ಯತೆ ಅನಿಯತ್ ಸಂಯೋಗಪೇಕ್ಷಿತ ದವತ್ವಂ ಆದಿಚಂದನಾ ಸಮವಾಯ ಕಾರಣ ಭೂತೇಜೋಜಲ ವೃತ್ತಿ ಭೂತೇಜಸೋ ಯಥಾದಿ ಸುವರ್ಣಯೋರಗ್ನಿ ಸಂಯೋಗೇಂದ್ರೋತ್ತಮ ನೈಮಿತಿಕಂ ಜಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕಂ ದ್ರವತ್ವಂ ಸ್ನೇಹ ಚಿಕ್ಕಣತಾ ಜಲಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಕಾರಣಗುಣಪೂರ್ವಕೋ ಗುರುತ್ವಾದಿವತ್ ಯಾವತ್ ದ್ರವ್ಯ ಭಾವಿ ಶಬ್ದ ಸೂತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಗುಣ ಆಕಾಶಸ್ಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅನುಕಥಮಸ್ಯ ಸೂತ್ರೇಣ ಗ್ರಹಣಂ ಯ पितोर वेद्याद देशे शब्दो जायते स्वतंतु पुरुष देशे सत्यम वेदी देशे जाता शब्दो विचि तरंग न्यायन कदम्बम तुल न्यायन वासनीतम शब्दांतरम आरभते सच सप्त शब्दांतरम इति क्रमेण स्वतंतु देशे जातो अन्य शब्द रुद्रण गृहते नत्वाद्योनाथ मध्यम एवं मंत्रे पाठमाने दलत्व विभाग देशे जाता शब्द शब्दांता रंभक मेण स्त्रोत्र देशे शब्द जनयति शब्द स्त्रोत्रण गृहते नास्त्योन मध्यम मेरी शब्दो मया श्रुता इति मतिस्तु ग्रांतैव मेरी शब्दोत्पत्तौ वेद्या काश संयोग समवाय कारणम मेरी दंड संयोग निमित्त कारणम एवं वंश पाटना चक्षता शब्दोत्पत्तौ वंश जलाकाश विभागो समवाय कारणम जलत्व विभागो निमित्त कारणम इत्थम आद्य शब्द संयोगजो विभागजो वा अंत मध्यम शब्दास्तु शब्दा समवाय कारण का अनुकूल वात निमित्त कारण का यथोक्तम संयोगात् विभागाच्च शब्दाच्च शब्द निष्पत्ति इति वैशेषिक सूत्र 2231 आद्यादीनां सर्व शब्द नाम आकाशम एकमेव समवाय कारणम कर्म बुद्धि वत्क्षणा वस्थायित्वम तत्रात्य मध्यम शब्दः कार्यम शब्द नाश्यः अन्त्यस्तूपान्त्येन उपान्त्यस्त्वन्त्येन तुन्दोप तुन्द्यान्येन विनश्यतः इदं त्वयित्तम् उपान्त्येन त्रिक्षणावस्थायिना अन्त्यस्य दीयक्षणमात्रानुगामिना तृतीयक्षणे चास्तान्त्य नास जनना सम्भवात् तस्मात् उपान्त नाशात् देवान्त नाश इति विनाशित्वं च शब्दस्यानुमानात् तथा हि शब्दो नित्यः सामान्यवत्त्वे तत्त्वम् अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वात् घटवदिति शब्दस्यानित्यत्वं साध्यम् अनित्यत्वं च विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्वं न तु विनाशावच्छिन्न सत्तायोगित्वं सागभावे सत्ताहीने नित्यत्वाभाव प्रसंगात् सामान्यवत्ते सत्यस्मादि बाह्येन्द्रिय ग्राह्यत्वम् हेतु इन्द्रिय ग्राह्यत्वात् इत्युच्यमाने आत्मनि विचारः स्यात् अत उक्तं बाह्येति एवमपि तेनैव योगि बाह्येन्द्रियेण ग्राह्ये परमाणुवादो विचारः स्यात् अतो योगि निराकाश मुक्तम् स्मतादिति किं पुनर्योगि तद्भावे प्रमाणम् उच्यते परमाणव कस्यचित् प्रत्यक्षा प्रमेयत्वात् घटवति तथापि सामान्यादिना व्यभिचारोत् उक्तम् सामान्यवत्त्वे सतीति सामान्याद्विग्रहस्य निस्सामान्यत्वात् अर्थप्रकाशो बुद्धि नित्या नित्या च एषी बुद्धि नित्या नेत्री तु अनित्या प्रीति सुखम् तच्च सर्वात्मनानुकूल वेदनीयम् पीड़ा दुखम तच्च सर्वात्मना प्रतिकूल वेदनीयम् राग इच्छा क्रोधो द्वेषः उत्साह प्रयत्न उद्यादय षड् मानस प्रत्यक्षः धर्माधर्मौ सुख दुःखयोर् असाधारण कारणे तौ चा प्रत्यक्षा वाप्य गम गम्यौ अनुमान गम्यौ च तथा देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्त विशेष गुणजन्यं कार्यत्वेन देवदत्तस्य भोग हेतुत्वात् देवदत्त प्रयत्न जन्य वस्तुवत् यस्य शरीरादिजनक आत्मविशेष गुणः स एव धर्मो धर्मस्य प्रयत्नादीनां शरीराजनकत्वात् इति संस्कार व्यवहार असाधारणं कारणं संस्कारः तथा विदो वेगो भावना सृष्टि स्थापकस्येति तत्र वेग प्रत्यक्षति प्रतिक्रिया हेतु भावनाख्यस्तु संस्कार आत्मा वृत्तिरनुभव जन्यः प्रतिहेतु जनयति उद्बोधश्च सहकारी लाभ सकारणश्च संस्कारश्च तद्देश दर्शनादयः यथोक्तम् सादृश्चाद्यश्चिन्ताद्या बीजस्य बोधकाः इति स्थापकस्तु स्पर्शवत् द्रव्य विशेष वृत्तिः अन्यथा भूतस्य स्वास्थ्यस्य अनुवादे पुनस्तदवस्थापादकः एते च बुद्ध्यादयो धर्मान्ता भावना च आत्मविशेषगुणाः गुणाः ताः अत्र प्रतिज्ञां तेजः संयोगेन जायमान रूपाधितुष्टयमधिकृत्य वादद्वयस्य प्राधान्यम् तस्य परमाणावेव पाकं स्वीकुर्वन्तः पीलुपाकवादिनो वैशेषिकाः अव्यविनावस्तभेष्वेषु पाकाशुभवात् तेषो अतिवेग वशात् सद्यः पूर्वव्यूहना शव्यूहान्तेरुत्पत्ति सम्भवाच्च तेजः संयोगान्न वैविनि नष्टे सति तत्परमाणुषु पूर्वरूपादि निवृत्त्यनन्तरम् रूपान्तरस्थोत्पादे प्रोक्तुरत्यष्टवशात् तनुकादिक्रमेण अवयविन उत्पत्तिर्जायते एवञ्च परमाणुरूप कारणगुणक्रमेणावयविनि रूपादित्पत्तिरिति मन्यते किन्तु नैयायिकास्तु स्वयं घट इति सत्यभिज्ञाबलात् अवयविनः सच्छिद्रत्वादनन्त अवयविनामुत्पत्तिविनाश कल्पनापेक्षया अवयविनि पाककल्पने लाघवाच्चावयविन्नष्टेऽपि पाकेन पूर्वरूपादेर्निवृत्त्यनन्तरम् रक्तरूपाद्युत्पत्तिसम्भवेन पृथले घटद्रणुकाद्यवयविन्यपि पाकम् मन्यमानाः पिठरपाकवादिनि इत्युच्यन्ते तथा च पीलुपाकवादिमतम् प्रदर्श्य सम्प्रति पिठरपाकवादिमपि दर्शयति अन्यत्रेति परमाणुसद्भावे प्रमाणमाह यदिदमिति तथा च सर्वेणुः सावैवारब्धः बहीन्द्रियवेद्रव्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन जडुकम् सांसिद्धितः ततः परमाणु साधयति तदपीति परमाणोरारब्धत्वे आपत्तिमाह तथा च सतीति त्रिणुकस्य द्वाभ्यामारम्भे बहुत्व संख्यानुपत्तिरित्यत आह त्रिणुकमिति परिमाणस्य स्वजातीयोत्कृष्ट परिमाणजनकत्वनियमात् अणुजन्यस्यानुतरत्वापत्या दशरेणो प्रत्यक्षत्वापत्त्यर्थः दशरेणुगतमहत्त्वप्रयोजकम् जणुकरूपकारणमहत्त्वस्यासम्भवादाः तत्र यदि आकाशम् लक्ष्यति शब्दगुणकम् यदि शब्दस्य विशेषगुणत्वात् साधकमनुमानम् उपन्यस्यति तथा हि तस्य प्रतिज्ञादिगुणत्वान् निवारयति न चेति सशक्तप्रत्येदे पृथिव्यादिषु निषेधे अन्यत्र गुणादौ प्रसङ्गात् परिशिष्यमाणे गगने यः सप्रत्ययः स परिशेष तस्मादाह अतेभ्य इति आकाशधर्मस्य जातित्वाभावमाह एकत्वेति तथा शुद्धम् व्यक्तेरभेदतुल्यत्वम् सङ्करो यथानवस्थितिः रूपहानिसम्बन्धो जातिवादकसङ्ग्रहः व्यक्तेर्भेदूनाम् स्वाश्रयव्यक्तिनिष्ठभेदाभावः स्वस्य जातित्वे बाधकः त्वाञ्चात्र आकसत्वादि धर्मस्तद्धर्माणाश्रयाणाम् विगणादीनाम् अज्ञातत्तद्धर्माणाम् जातित्वाभावो बोध्यः व्यक्तेरतुल्यत्वम् नाम तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वम् जातिभेदबाधकबोध्यम् घटत्वकलशधर्मयोर्नूनातिरिक्त व्यक्तिवृत्तितया भिन्नजातित्वभावो जात्यैक्यमित्यर्थः शङ्करो नाम साङ्कर्यतच्च परस्परत्यन्ताभावसमानाधिकरणधर्मयोरेकत्र समावेशः जातित्वाबाधकस्तथा च भूतत्वम् विहाय मनसि मूर्तत्वम् भूतत्वम् विहाय मनसि मूर्तत्वम् मुक्तधर्मद्वयस्य प्रतिज्ञाचतुष्टयसत्त्वा शङ्करत्वेन तादृशभूतत्वमूर्तत्वयोर्जातित्वाभाव इति प्राचीनाः नव्यास्तु तस्य जातिबाधकत्वम् न स्वीकुर्वन्ति अनवस्थिति नमस्था सा च अप्तमालिकानन्तरपदार्थकल्पनाया विश्रान्तेरभावस्वरूपा जातिमत्वस्य बालिका तथा च जातेर्जातिमत्वेन अवस्थायाम् पर्यवसानम् जालतो घटत्वपटत्वादिषु न जातिमत्वमिति भावः रूपहानि रूपस्य विशेषाणाम् स्वरूपस्य स्वतो जावर्तकत्वस्य हानिर्जातिमत्वस्य बाधिका यथा पदार्थानाम् जातिगुणक्रियावयवादिद्वारा भेदकम् भवति परमाणु भेदकोऽन्तिमो व्यावर्तको विशेषः यथा अयम् परमाणु तत्परमाणुतो भिन्न वैशेषादि चाकारकनुमानेन परस्पर परमाणु भेदको विशेषः चिद्यति साच्युक्त विशेषे तत्तद्धर्मान्तरम् स्वीकृत्य विशेषणत्वस्य जातित्वेन स्वीकारः स्यात् तदा विशेषस्य शास्त्रे परमाणु भेद तत्त्वं ज्ञान्यत ततोर्व्यावर्तकत्वं चेतः विशेषत्वस्य जातित्वं स्वीक्रियति भावः संबंधो हि अनियोगिता प्रतियोगितान तर संबंधेन समवायाभावो जातिमत्वस्य बाधक तथा हि समवायाभावो न कुत्रापि समवायेन वर्तते न वा तयोर्मध्ये समवायेन कस्यापि स्थिति तेनानुयोगिता प्रतियोगितान्यतर संबंधेन समवायाभावात् तयोर् जातिमत्वाभावः अत एव समवायत्वात् भावत्व धर्मयो जातित्वाभाव इति फलितार्थः जातिभाव संग्रह इत्यत्र जाति तद्भेद जाति मत्वादीनां परिग्रह गगन कार्यस्य शब्दस्य तत्त्वोपलब्धि तत्त्वादा विभुचेति तस्य नित्यत्वे बीजमाह अत एवेति अथ चित्त्यादि भूतपञ्चकं निरूप्य क्रम प्राप्तं कालं निरूप्य अधिकालोपीति विभुत्वेति दिक्संवेद परस्तापर समवाय कारण संयोगाधिकरणत्वं कालस्य लक्षणं गगनादौ अतिव्याप्तिवारणाय विशेषदलोपादानम् पिण्डादौ अतिव्याप्तिवारणाय विशेषान्तलोपादानम् प्रत्यक्षाविषयीभूतम् तम् प्रमाणयति दिग्विपरीतेति परत्वापरत्वेदविदे कालिके दर्शिके च तत्र कालिकापरत्वम् नाम ज्येष्ठत्वम् कालिकम् परत्वम् नाम कनिष्ठत्वम् आभ्याम् कालोन्मेय इति भावः दैशिकपरत्वम् दूरत्वं दैशिकमपरत्वं च सन्निहितत्वम् आभ्याम् दिवनुमीयत् इत्यग्रेऽस्ति भविष्यति तद्यस्य गुणत्वेन तस्य दिवत्वं प्रतिपादयन् सद्गुणानाः सङ्केति कालत्वस्यैक्य व्यक्तिवृत्तितया जातित्वाभावं बाधीयन्नाः एकेति दैशिकपरत्वापरत्वविरुद्धभाषमाने कालिकपरत्वापरत्वे निर्दिशति सन्निहित इति कारण वैलक्षण्यमन्तरा कार्य वैलक्षण्य असम्भवात् तादृश कार्येण कारणमनुमापयति तदिदमिति कालिकपरत्वादिकार्यस्य भावकार्यत्वेन कारणद्रव्यनियमादत्र पिण्डस्य समवायकारणत्वं रविक्रिया भूयस्त्वादिज्ञानेन जायमानत्वात् तस्य निमित्तकारणत्वं कालपिण्डसंयोगश्च समवायिकारणत्वम् अवगन्तव्यम् तथा च कालिकापरत्वापरत्वे समवायिकारणके भावत्वेऽस्ति कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन समवायिकारण कालपिण्डसंयोगाश्रयतया कालः सिद्ध्यति अथवा बहुतररविक्रिया विशिष्टशरीरज्ञानेन अयं परः स्वल्पतररविक्रिया विशिष्टशरीरज्ञानेन अयं परः इत्याकारके ज्ञाने भवतः परत्वापरत्वं जनकं ज्ञानमिदं परंपरा संबंध घटक सापेक्षम साक्षात संबंधाभावे सति विशिष्ट ज्ञानत्वात् लोहितः स्फटिक इति प्रत्ययवत् इत्यनुमानेन तादृश परंपरा संबंध घटकतया काला सिद्ध्यति परंपरा संबंधश्च स्वसमवाय संयुक्त संयोगः स्वपदेनात्र रविक्रिया तत्समवायि रवितत्वयुक्तः कालस्तस्य पिण्डेन सह सम्बन्धः इति समावयः प्रतिव्यादीनाम् अव्यापकत्वाद्दिशश्च संयोग पनायकत्वेन रविक्रियोपनायकत्वास्ते न चात्मगगनयो तदुपानायकत्वमिति वाच्यं तथा सति काश्मीरस्थ कुङ्कुमरागेण कर्णाटककामिनी कुचकलशो परञ्जकत्वावर्तेः ननु कालेऽपि तद्दोषतादवश्यमिति चेन्न कालस्य तादृशक्रियोपनायकत्वेन विशेषणतया घटकत्वेन तादृशपरत्वापरत्वबुद्धेर्निमित्तकारणत्वेन सिद्धौ तदन्येषामन्यथा सिद्धे यथा एक एव पुरुषः पठनक्रियायोगात् पाठकः पचनक्रियायोगात् पाचकः जीर्णक्रियायोगात् याचकः इति व्यवदिश्यते यथा कालस्यैकत्वेऽपि क्रियारूपोपाधिभेदेन सो हि भूतभविष्यत् वर्तमानसंज्ञा लभत इत्यत आह पुरुष एवेति भूतत्वं नाम वर्तमानध्वंस प्रतियोगित्वम् भविष्यत्वं नाम वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्वम् शब्दप्रयोगाधिकरण कालत्वं वर्तमानत्वं कालस्य कालमात्रं प्रति साधारण कारणतया सिद्धौ अपि कालिक प्रत्वापरत्व बुद्धेर साधारण निमित्त कारणत्वं इहावगन्तव्यम् इति भावः अथ क्रम प्राप्तां दिशं निरूपयति तथा च तल्लक्षणं विभुत्वे सति कालात् समवेत परत्वा परत्वा समवाय कारण संयोगा अधिकरणात्म गगनादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशिष्टतलोपादानम् पिंडादौ अतिव्याप्ति वारणाय सत्यंतम् प्रत्यक्षाभिषयी भूताम् ताम् प्रमाणयति काल विपदेति संयोग भूयत्व ज्ञानेन दिक्कृतम् परत्वम् संयोगाल्पत्व ज्ञानेन दिक्कृतम् अपरत्वम् जायते भावकार्यस्य कारणद्रव्य नियमात् परत्वास्य वस्तुन समवाय कारणत्वम् अवधि सापेक्ष संयोग भूयत्वादि ज्ञानस्य निमित्त कारणत्वम् दिक्पिंड संयोगस्यासमवाय कारणत्वम् इहावगन्तव्यम् तथा च दर्शिके परत्वापरत्वे सासमवाय कारणके भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन समवाय कारण दिक्पिंड संयोगाश्रयतया दिक् सिद्ध्यति अत्रायं विशेषः कालिका परत्वापरत्वे सर्वेषां समाने किन्तु दैशिक परत्वापरत्वे अवधि सापेक्षे बहुतर संयोगादि विशिष्ट दिक्पिंड ज्ञानेन जायते अतएव काशीतः त्यागमपेक्ष गया दूरे वर्तते इत्यत्र काशीमधिकृत्य त्यागे अपरत्वम् गयायां परत्वाञ्चातः परत्वजनकम् अवधि सापेक्ष बहुतर संयोग विशिष्ट शरीर ज्ञानमिदम् परंपरा संबंधे खटक सापेक्षम साक्षात संबंधाभावे सति विशिष्ट ज्ञान लोहित स्फटिक इति तत्त्ववत् इत्यनुमानेन तत्संबंध खटकतया दिक् पदार्थ सिद्ध्यति जिसो द्रव्यत्व सिद्धये तद्गुणानाह संख्येति अयमस्मात् पूर्वः अयमस्मात् पश्चिमः इत्यादि विलक्षण प्रत्यय जायते तत्साधारण निमित्त कारणमंतरा संवाद इत्यर्थाः पूर्वादिति यन्मूर्त द्रव्यम यन्मूर्त द्रव्यापेक्षयो दयगिरि सन्निहितम् तन्मूर्त द्रव्यम तदपेक्षया पूर्वम् यन्मूर्त द्रव्यम यन्मूर्त द्रव्यापेक्षयो दयगिरि व्यवहितम् तन्मूर्त द्रव्यम तन्मूर्त द्रव्यापेक्षया पश्चिमम् एवञ्च यन्मूर्त द्रव्यापेक्षया यन्मेरु सन्निहितम् तन्मूर्त द्रव्यम तदपेक्षया उत्तरम् यन्मूर्त द्रव्यम यदपेक्षया मेरुर्व्यवहितम् तद्दक्षिणम् दिश एकत्वेऽपि एवं विद मूर्त द्रव्य रूपोपाद्यवच्छिन्नतया सा पूर्वादि संज्ञा लभते सिद्ध्यादीनां व्यापकत्वात् कालात्म गगनानां विभुत्वे अप्यन्य देशस्थ यथा कुसुमे नान्य देशस्थ स्फटिक मणि रूपरंजकत्वात् पत्येरित्यत् आह तेषाम् अन्यति इत्यादीनां व्युत्पत्ति प्रकारस्तु भास्करः पूर्वमुच्चां प्रकर्षेणाञ्चितीति प्राची प्रत्यञ्चतीति सतीचि उदञ्चतीत्युदीचि अवाञ्चतीत्यवाचि समेय प्रतिपादक सूत्रोक्तात्मस्वरूपम् पूर्वम् विधाय वैशिष्टिक पदार्थान्तर्गत नवविध द्रव्यान्तः सृष्टात्मस्वरूपम् पुनरपि प्रतिपादयितुमाह आत्मत्वेति ननु समवायस्कम् प्रति तादात्म्यात्मनः कारणत्वात् सुख दुख समवाय कारणतावच्छेदकतया ज्ञान समवाय कारणतावच्छेदकतया वात्मत्वजाते सिद्धति चेन्न अनात्म निघटादौ सुखानुत्पादस्तु धर्म रूपाद्यष्ट विहादेव भवतीत्युपगमात् नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यम्भावनियमेन तादृशात्मत्वजातेरीश्वरे अभावात् यदि समवायेन ज्ञानाधिकरणत्वम् आत्मत्वम् इति लक्षणादर सदा संभवति सर्वत्र लक्षण समन्वय निर्णयायिका अभिमत प्रमाण चतुष्टया प्रवृत्ते ईश्वरस्य तद्भावे प्रमाणाभावं प्रतिपादयताम् केषाञ्चित् दार्शनिकानां यमभिप्रायः बाह्य मानस भेदेन द्विविधस्य प्रत्यक्षस्य मध्ये न तावत् रूपरहिते ईश्वरे बाह्यं बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष स्वावच्छिन्नम् तत्तद्भूत रूपस्य हेतुत्वात् नापि मानसम् परात्म व्यावृत्त विजातीयात्म मनः संयोगस्य स्वात्मान प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नम् प्रत्यय हेतुत्वात् च न बाह्याभ्यन्तर प्रत्यक्ष प्रमाण प्रसर इति फलितार्थः नाप्यनुमानम् मानम् व्यविचाराग्रह पूर्वक सहचार ग्रहस्य व्यक्तिग्रहे हेतुत्वेन नेश्वरेण सह कस्यापि हेतोर्नियतसाहचर्यानवलोकनात् न चोपमानम् तस्य सादृश्य ज्ञानमंतरा संभवेन ईश्वरे तदनुपपत्तेः न खलु शब्दः प्रमाणम् श्रुतेः परमाप्त महेश्वरोच्चैतत्वेनैव सामान्याभ्युपगमा ईश्वर एव सन्देहोदयात् तत्प्रमाणस्य वक्तुं शक्यत्वात् इत्येन यद्यत् कार्यं तत्तत् कर्तजन्यम् इति व्याप्तिर्बलेन चित्यङ्कुरादिकं कर्तजन्यं कार्यत्वात् घटोत् इत्यनुमानेन कर्तजन्यत्व सिद्धावस्मादीनां तत्कर्तृत्वा सम्भवात् तत्कर्तृत्वे नेश्वर सिद्धि कर्तृत्वं च तत् उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति मत्वं तथा च तत्तत् ज्ञानेच्छादिमत्वेन तत् सिद्धे एवञ्च कार्यायोजन इत्यादि पदात्ततः श्रुते वाक्यासंख्या विशेषाश्च साध्यो विश्वाविदव्ययः इत्युदयनाचार्योक्त हेतुभिरपि तत्सिद्धिरन्यथा जगत आकस्मिकत्वे नोत्पत्तौ तु जगतां यदि नोकर्ता कुलालेन विना घटः चित्रकारं विना चित्रं स्वतः एव भवेत् तदा इत्यापद्ये तथा चेश्वर सिद्धौ द्यावाभूमि जन्यन् देव एकः इत्याद्यागम वाक्यानामपि प्रमाण्यम् उपपद्यते पूर्वं जीवात्मनो निरूपितत्वेनाह तस्योक्त एवेति तस्य द्रव्यत्वेन तद्गुणानाह तस्यति आत्मनो नित्यत्व विभूतादि प्रयोजन मुक्त प्रायमेव अथैव अष्ट द्रव्य निरूपणानन्तरं क्रम प्राप्तं मनो निरूपयति मनस्वेति तस्य मध्यम परिमाणवत्वे अनित्यत्वापत्तेर महत् परिमाणवत्वे चैलकालावच्छेदेन चक्षुषादि ज्ञानोत्पाद तत्परिमाणं बोधयन्नाह अन्विति न च स्वरूपां तरतां सौरभान्वितां षट्कुलीं वक्षग्रतो जनक्षैकदेव चाक्षुषराशनघ्राणजादि ज्ञानसम्भवात् तस्य विवृत्तम् इति वाक्यं चञ्चलस्य मनस आशुतरसञ्चरितया विपच्छतपत्रभेदनस्यैव योगपद्याभिः मानस्याप्यनुभव विरोधेन समत्वात् अन्यथा रूपज्ञानानुत्पत्तिरिहि मनसो लिंगम् इति न्यायसूत्रोक्तम् अपि विरुध्येत आत्मनो विभुत्वेऽपि शरीरावच्छिन्नात्मना स मनः संयोगामन्तरा ज्ञानासम्भवादयं क्रमो अभिमतः आत्मा मनसा युज्यते मनः इन्द्रियेण इन्द्रियाण्यर्थस् ततो ज्ञानं जायत्येति तत्र मनसः प्राधान्यं ज्ञापयन्नाह आत्मसंयोगीति आत्माभिमुखं शान्तं मनो मोक्षाय कल्पते अत एव योगावशिष्टे चोक्तम् मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषये आसक्तं मुक्तये निर्वासनं पुनः एवञ्च आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निध्यास्तव्यः इति श्रुत्यापि आत्मदर्शनस्य प्रतिपादितत्वान्मनस इन्द्रियत्वमन्तरा आत्मद्गुणानां प्रत्यक्षत्वा सम्भवात् तस्येन्द्रियत्वम् उपवादयति अन्तरिन्द्रियमिति ज्ञानसामान्यं प्रति मनसः साधारणकारणत्वेन सिद्धावपि सुखादीनां तत्साधारणकारणत्वेन तत्सिद्धिमाह सुखादीति प्रकृतकर्मजन्याद्यष्टजातसुखदुःखादीनां स्वमनसैवोपभोक्तुं शक्यत्वान्निरवयव द्रव्यस्य नित्यत्वाच्चाह नित्यमिति ज्ञानसामान्यं प्रत्यात्मनः संयोगस्य कारणत्वादाह अत एवेति तथा च ज्ञानसामान्यं प्रति मनस्त्वेन सुखादिकं प्रतीन्द्रियत्वेन मनसः कारणत्वम् इति भावः अप्रत्यक्षतया तदनुमानमाह तथा इति द्रव्यनिरूपणम् द्रव्यनिरूपणानन्तरम् अवसरप्राप्तं गुणलक्षणमाह सामान्येति तथा च सामान्यवत्त्वे सति समवायकारणभिन्नत्वे सति कर्मभिन्नत्वमित्यर्थलाभः प्रथमसत्यन्तदलानुपादाने सामान्यादौ अतिव्याप्तिः द्रव्ये अतिव्याप्तिवारणाय द्वितीय सत्यन्तदलोपादानं तस्य च समवायिकारणभिन्नार्थकत्वमन्यथा आत्मविशेषगुणानां कुत्रापि समवायकारणत्वासम्भवेनाद्व्याप्तेः अचम वायु कारण गुण कर्म मात्र प्रथम दला अनुपादाने भी सामान्यादौ सद्भावे नादि व्याप्ति भावा द्वियर्थापत्तेस्य कर्मण्यति व्याप्ति वारणाय विशेष दलोपादानं तथा च द्रव्य कर्मण्यत्वे सति सामान्यवत्तम गुण सामान्य लक्षणं अत्यंत दलेन द्रव्य कर्मणो विशेष्येन सामान्यादेश्य व्यावृत्तिः द्रव्यत्व व्यापकतावच्छेद सत्ता भिन्न जातिमत्तम वा गुणत्वं बोध्यं तदाश्रयमाह सचेति अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थं परिगणति गुणादीनान्निर्गुणत्वात् चतुर्विंशति संख्या यात्रापेक्षा बुद्धि विषयत्व रूपः न तु समवायेनान्यथा द्रव्य लक्षणस्यापि व्याप्तेः प्रथम परिगणित रूप लक्षणमाह तत्रेति एवञ्च चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वं रूपस्य लक्षणम् सादि विशेष गुणादौ अति व्याप्ति वारणाय तत्यंतम सांसिद्धिक द्रवत्वे व्याप्ति वारणाय मात्र पदोपादानम तथा चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम् इति तदर्थः येनेन्द्रियेण या वक्तृ गृह्यते तद्गता जातिस्तद्भावश्च तेनैवेन्द्रियेण गृह्यते इति नियमात् रूपादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेष दलोपादानम तत्रापि प्रभागसंयोगे अतिव्याप्ति वारणाय विशेष पदोपादानम तदाश्रयमाह पृथिव्यादीति शुक्ल कृष्ण रक्त पीत हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविध रूप भेदमाह तच्चेति ननु नाना रूप वतामेवानाम रूपेणैव चित्र रूप पत्तौ सप्तम चित्र रूपांगीकार कथमिति चेन्न द्रव्य चाक्षुष प्रत्यक्षत्तावच्छिन्नम प्रति समवायन रूपस्य हेतुतया चित्त रूप स्वीकार मंत्रा निरूपस्याविनो अप्रत्यक्षत्वापत्तेत चित्र रूपम पृथिव्याम स्वीक्रियते तेन सत्विधम रूपमिति देयम् नित्यानित्योभयविद पृथ्वी रूपस्य पाकजत्वेन तस्यानित्यत्वमाह तच्चेति जलीय तैजस परमाणुगत रूपस्य नित्यत्वमाह आप्येति जलीय तैजस गुणकादौ तस्य नित्यत्वमाह आप्येति परप्रकाश कृतावच्छेदक रूपत्वाव्याप्ति जाति विशेषो भास्वरत्वम् तद्वद् भास्वरम् परप्रकाशमित्यर्थ रसलक्षणमाह रसेति साचा रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रसस्य लक्षणम् रसस्य षड्विधत्वम् दर्शयति तत्रेत्यादिना ननुविधा षड्विध रूपातिरिक्तमेकम् चित्तरूपम् अवयविनङ्गी क्रियते तथैव मधुरादि षड्विध रसातिरिक्त चित्र रस कथन नेति चेन्न अवयविनो निरूपत्वे तत्प्रत्यक्षत्व असंभवात् एकम चित्रम रूपम इत्याकारक प्रतीतेश्चानुभव सिद्धत्वादंगी क्रियते किन्तु त्रापत्ति विरहा देव चित्र रसनांगीकार इति ध्येयम् वस्तुतो विभिन्न रस विशिष्ट रसरेणु हिजीयमानस्य चतुर्णुकस्य रसस्य भवन्मते अवयव रसत्वेन प्रत्यक्षा योग्यत्वात् अवयविनो रसस्य सद्भावाच्च तथोक्त रस प्रत्यक्षत्वानुपत्ति रूपापत्ति सद्भावेन चित्ररसोपि स्वीकर्तव्य इत्यपरे पृथ्वी जलो मध्य नित्यानित्योभय विद पृथ्वी मात्र वित्तेर मधुरादि षड् विद रसस्य पाकजत्वेनानित्यत्वम् जलीय परमाणु वृत्तेस्तस्य नित्यत्वम् तणुकादौ स्थितस्य चानित्यत्वम् जले मधुरस्यैव रसस्य तत्त्वात्तस्य च पाकजत्वादाह अस्विति तथा च जलीय परमाणुनिष्ठस्य तस्य नित्यत्वम् जलीय तणुकादिनिष्ठस्य तस्य नित्यत्वम् इति बोधयन्नाह नित्य इति गन्धम् निरूपयति गंध इति ग्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति विशेष गुणत्वं गंधस्य लक्षणं तस्य पृथ्वी असाधारण धर्मत्वेन आह पृथ्वी इति नित्यानित्योभयविद पृथिव्या गंधस्य पाकजत्वेन नित्यत्वाभावादाह अनित्येवेति तद्भेदमाह स इति ननु गंधस्य पृथ्वी मातृत्वे सुरभिः समीरणः इति प्रतीतिः कथम् उत्पद्यते इत्यत आह जलादौ इति स्वाश्रय संयुक्त समवायन इत्यर्थः स्वपदेन चात्र पुष्पचंदनादि गतगंधो ग्राह्यस्तदाश्रयः पुष्पादि तत्संयुक्तो जलाद्यैव तत्समवायो जलादौ नित्येनेत्यर्थः स्पर्श लक्ष्यति स्पर्श इति सुगन्धिमात्रग्राह्यत्वे सति विशेषगुणोत्तम स्पर्शस्य लक्षणम् जलीय संसिद्धिर्दवत्ते अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पदोपादानम् तदाश्रयमाह पृथिव्यादिति तद्भेदमाह सचेति उद्भूतानुद्भूत भेदेन द्वैविध्यमापन्नेषु रूप रस गंध स्पर्शे महत् परिमाण समानाधिकरणानाम् उद्भूतानामेव तेषाम् तत्तत् इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं महत्वा समानाधिकरणानाम् उद्भूतानां च न प्रत्यक्ष विषयत्वं किन्त्वनुमान वेद्यत्वमित्यभिप्रायेण आह एते चेति अयमेकः इमौदौ इत्याकारक प्रतीति असाधारण निरुक्त कारणत्वं संख्यायाः लक्षणम् परिमाणादीनामपि व्यवहार हेतुत्वादौ अतिव्याप्ति सद्वारणाय एकत्वादि पदोपादानम् संख्यायाः सकल द्रव्य वित्तित्वात् सामान्य पदोपादानम् तेन तस्याम् विशेष गुण तो व्यावृत्तिः कालादि साधारण कारणत्वे अतिव्याप्ति वारणाय लक्षणे असाधारण पदोपादानम् इति व्यवहारे दश गुणित क्रमेण प्रचलितानाम् संख्या संख्येयानाम् निर्देशो यथा एकम दश शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिर्बुदमेव च बृन्दम खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागर अन्त्यम मध्य परागं च दशविद्या यथाक्रमम् अनित्यमेकत्वं कारणगतैकत्व गुणपूर्वकम् इति ज्ञापयन्नाह स्वाश्रयति स्वपदेन चात्रा नित्यगतमेकत्वं ग्राह्यं तदाश्रयस्य यत्समवायकारणं तदेकत्वजन्यमि तदर्थ नानेकत्वावगाहिनी बुद्धिरपेक्षा बुद्धिस्तत्त्वे द्विस्त्वसत्त्वं तन्नाशे द्वित्वा नाश संभवात् उत्पत्ति प्रक्रियामाह तत्रेति तथा च भावकार्यस्य कारणत्रयविद्यनियमादाह तत्रेति अपेक्षा बुद्धिं विना द्वित्वोत्पत्तौ द्रव्येण सहेन्द्रियेण सन्निकर्षे द्रव्यप्रत्यक्ष प्रथम क्षण द्वित्व प्रत्यक्षत्वापत्ते अपेक्षा बुद्धिजन्यस्य द्वित्वादिरनेकाश्रयेषु पर्याप्तत्व मन्यथो भयत्वम् उभयत्रयो पर्याप्तम् न एकत्रित्याकारक प्रतीत्यनुपत्तिरिति द्वित्वादेर गुणानन्तरापेक्षा विशेषः जन्य द्रव्यनाशात् तदैकत्वनाशो द्रव्यनाशात् अपेक्षा बुद्धिनाशाच्च द्वित्वादिनाशमाह अपेक्षेति पूर्वोक्त व्याख्यान संग्राहकमभियुक्तानां पदमिदम् आदाविनिन्द्रिय सन्निकर्ष घटनादेकत्व सामान्यधि रेकत्वो भय गोचरामतिरतो द्वित्वं ततो जायते तस्माद्द्वित्वमतिष्ठतोऽपि परतो द्वित्वप्रमाणान्तरम् ते द्रव्ये इति धीर्यम् निर्गता द्वित्वोदय प्रक्रिया इति परिमाणम् लक्ष्यति मानेति स्थूलत्व दीर्घत्वादि परिमाणासाधारण कारणत्वम् परिमाणस्य लक्षणम् तस्य नवद्रव्य वित्ततया साधारण गुणत्वम् कालादीनाम् कार्यम् मात्रम् प्रति साधारण कारणत्वेन तत्रा व्याप्तिवारणाय लक्षणे असाधारण पदोपन्यास तद्भेदमाह तच्चतुर्विधम् इति अत्र भावप्रधानतया निर्देशस्तेनाळुक्तम् महत्त्वम् सत्तत्वम् दीर्घत्वम् इत्यर्थः परिमाणस्य नित्यानित्यभेदेन द्वैविध्यम् तत्रानित्यस्य कार्यगतपरिमाणस्य कारणाकाङ्क्षायामाह संख्येत्यादिना परिमाणस्य स्वसजातीय उत्कृष्ट परिमार्जनकत्वम् इति नियमेन परमाणुपरिमाणस्य द्रणुक परिमाणरम्भकत्वे द्रणुक परिमाणस्यानुत्तरत्वापत्तिरित्यतः परमाणुगत द्वित्व संख्यायाः जणुकगत संख्या सत्य समवाय कारणत्वं दृष्टांत द्वारा प्रतिपादयति तद्यथेति जणुक परिमाणस्य तसरेणु परिमाणारंभकत्वे तस्यानुतमत्वेन तसरेणु रप्रत्यक्षत्वापत्ति द्रव्य प्रत्यक्षे महत्वस्य हेतुत्वादत् आहतृणुकेति तथा च त्वं त्रणुक परिमाणं तदाश्रयस्त्रणुकस्तस्य समवायिकारणानि त्रणुकावयवास्तद्गतं बहुत्वं योनिः कारणमित्यर्थः अवयवगत परिमाणस्य अवयविगत परिमाणं प्रति कारणत्वं यत्र तद्दृष्टान्त यदि
चतुर्णुका तजयस्यावयवी शिथिल संयोगस्य परिमाणं प्रति कारणत्वम् आहतुलेति महत्परिमाण तारतम्यस्य गगनादि परिमाणे अणुपरि माल तारतम्यस्य च परिमाणौ विस्तान्तिर्विज्ञेयान्यथा मेरुसर्पयोः साम्यप्रसङ्गस्तथा च नित्यगतस्य परमाणु परिमाणस्य गगनादि परिमाणस्य च नित्यत्वम् रेणुकादिकार्यम् द्रव्यगतानाम् मध्यम परिमाणानां च नित्यत्वम् इति विज्ञापयन्नाह परमाणुविति क्रम प्राप्तं पृथक्त्वान् रूपयति पृथक्त्वम् इति इदमस्मात् पृथक् इत्याकारक व्यवहार असाधारणं कारणं न च तस्यन्योन्याभाव स्वरूपात् गुणत्वाभाव इति वाच्यं घटो न पट इत्याकारक प्रतीत्यपेक्षया घटात् पटः पृथक् इत्याकारक प्रतीते विलक्षणत्वात् अन्योन्याभाव विषय प्रतीति जनक प्रथमांत पदयो प्रयोग पृथक्त्व विषयक बोध जनक पंचम्यंत पद प्रयोग योर भेद जनकत्वाच्च अभिचान्योन्याभाव पृथकत्वयोर भेदे घटीयम रूपम न घटा इत्यत्र घटीयम रूपम घटात् पृथक् इत्याकारक प्रयोगापत्ते एवं च सूत्राम तयोर भेद सिद्ध्यति संयोगम लक्ष्यति संयुक्तेति इमौ द्वौ संयुक्तौ इत्याकारक व्यवहार साधारणं कारणं संयोगस्तस्योभयनिष्ठत्वात्स्वभावद्वित्तित्वाच्चाह इति तद्भेदमाह अन्यतरेति तत्संयोगत्रयमध्ये अन्यतरक्रियया जायमानः संयोगान्यतरकर्मजस्तम् दृष्टान्तेति यथेति भावकार्यस्य कारणत्रयविद्ये मीमांसायोगाश्रयपिण्डद्वयस्य समवायकारणत्वम् याश्च समवायकारणत्वमाह अस्यति उभयक्रियाजायमानसंयोगउभयकर्मजस्तम्दृष्टान्तेति यथा हस्तेति विभागं लक्ष्यति विभक्तेति इदमस्माद्विभक्तमित्याकारकप्रतीत्यसाधारणकारणत्वं संयोगनाशकत्वेति गुणत्वं वा विभागस्य लक्षणं यदि संयोगनाश एव विभागस्तर्हि क्रियोत्पत्ति द्वितीय क्षणेपि संयोगनाश प्रतीत्यापत्ति चादतो न संयोगनाशो विभाग इत्यवधेयम् तद्भेदमाह सचेति तृतीयो विभागज विभागो द्विविध करणमात्र विभागज कारण करण विभागजश्चेति तत्रादयो यथा कपाल कर्मणा घट कारणीभूत कपालद्वय विभागे सति घटारम्भक कपालद्वय संयोगो नश्यति द्रव्यारम्भक संयोगश्च द्रव्या समवायकारणतया तन्नाशे घटात्मक द्रव्यस्यापि नाशस्ततः कपालद्वय विभागजन्यः कपालाकाश विभागो जायते न च घटनाशात् पूर्व कपाल विभाग एव कपालाकाश विभागम् जनस्थिति वाच विद्यमाने अवयविन्यवयवस्य देशांतर विभागा संभवात् न च कपालकमेवेकदा कपालद्वय विभागमाकाश कपाल विभागञ्च जनयत्विति वाच्यम् एकया क्रियक्षणावच्छेदेन द्रव्यारम्भक द्रव्यानारम्भक संयोगाद्वय विरोध विभाग द्वयजनने उत्सत्कमलकुडमलभङ्ग प्रसङ्गात् एवञ्च विभागज विभागस्य कर्मज विभागयोर्मध्ये अनन्तभूतेत्वात् तस्यातिरिक्तत्वमित्यवधेयम् तृतीयम् विभागज विभाग मुद्राहरति तृतीयेति तथा चायं प्रवादः द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे विस्तृणः स्खलिता बुद्धिस्तम्वै वैशेषिकं विदुः एकतन्त्रेण परत्वापरत्वे लक्ष्यति परत्वापरत्वे इति अयं परः इत्याकारक व्यवहार साधारणं कारणं परत्वम् अयं पर इत्याकारक व्यवहार साधारणं कारणं परत्वम् तयोर्भेदमाह स्थेत्विति दिक्कृत परत्वादिर्बुद्धेरुत्पत्ति प्रकारमाह एकस्यामिति भावकार्यस्य कारणत्रय विद्यनियमाद् अत्र पिण्डस्तादृश परत्वादेः समवायकारणम् दिक्पिण्ड संयोगो समवायकारणम् अपेक्षा बुद्ध्यादि निमित्त कारणम् कालकृत परत्वादि बुद्धौ दिशो नेत्यस्यानावश्यक तामुपपादयन् तदुत्पत्ति प्रकारमाह अनियतेति तथा च बहुतर रविक्रिया विशिष्ट शरीर ज्ञानेन कालकृतं परत्वं स्वल्पतर विक्रिया विशिष्ट शरीर ज्ञानेन कालत्वं परत्वं जायते। अत्र कालपिंड संयोगस्य समवाय कारणत्वं उभयाविद परत्वादीनां दिक्काल प्रकरणे निरूपितत्वादिकं तत्रैवावलोकनीयम्। क्रम प्राप्तं गुरुत्वं लक्ष्यति गुरुत्वेति। द्वितीय पतना समवाय कारणे वेगे अतिव्याप्ति वर्णाय लक्षणे आद्य पदोपादानम् अनुमान वेद्यत्वदाह अतीन्द्रियमिति। परिशेषात् पतना समवाय कारणत्वेन तत्सिद्धिं सूत्रकार वचनेन प्रमाणयति। इथोक्तमिति द्रवत्वं निरूपयति। द्रवत्वमिति द्वितीय स्पन्दना समवाय कारणं वेगे अतिव्याप्ति वर्णाय लक्षणे आद्य पदोपादानम् नैमित्तिक सांसिद्धिक वेदात्पच्यते विधम्। तत्र तेज संयोग जायमान नैमित्तिक द्रवत्वाधिकरणाकांक्षायामाह भूतेजसो रीति सांसिद्धिक द्रवत्वाधिकरणमाह जले इति। अथ स्नेहं लक्ष्यति स्नेह इति। तथा च चूर्णादिपिण्डीभाव हेतुत्वे गुणत्वं स्नेहस्य लक्षणम्। स्नेहस्य पाकजत्वेन कारणगुणाः कार्यगुणान्नारम्भन्ते इति नियमादाः कारणेति। तैलादौ जलीय स्नेहस्य स्वादद्वारा विद्यमानत्वेऽपि तस्योत्कृष्टतया नाग्ने प्रतिबन्धकत्वं किन्त्वानुकूल्यमकृष्ट स्नेहस्यैव प्रतिबन्धकत्वात् तद्विशिष्टस्य जलस्याग्न्युप शामकत्वम् इत्यवधेयम्। शब्दं निरूपयति शब्द इति। श्रोत्रग्राह्यत्वे गुणत्वं शब्दस्य लक्षणम्। शब्दत्वादौ अतिव्याप्तिवर्णाय विशेष्यदलम् रूपादौ अतिव्याप्तिवारणाय विशेषणदलोपादानम्। अत्र विशिष्यते व्यवच्छिद्यते स्वास्त्रयो येन स विशेषः स जातौ गुणस्येति विशेषगुणस्तथा च शब्दविशेषगुणस्तत्वेनैव गगनस्याष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वेन सिद्धिः सम्भवतीति भावः। सम्बन्धं वर्तमानं च क्रियते चक्षुरादिनेति नियमेन श्रोत्रभेदादिशब्दयोर्भिन्नदेशाश्चित्वात् ब्रेकट् में भिन्नोपाद्य वच्छिन्नदेशवत्वात् ब्रेकट् बन्द् श्रोत्रम् तथोक्त शब्द ग्रहण समर्थम कथम इत्याशंकते नन्मिति। सूत्र द्वारा गृहमाण शब्दों न भेयादि देशोत्पन्न शब्द किंतु विचित्रंग न्यायन कदम्ब मुकुल न्याय न वा तच्छब्द धारायाम जायमानायाम अन्तिमो यः सूत्रम उगत स एव गृह्यते इति समादत्ते सत्यमिति। संयोग विभागज प्रथम मध्यम शब्दानां सूत्र ग्रहण समर्थयति नत्विति। भेदी शब्दो मया श्रुत इत्याकारकृतिस्तु भ्रान्तिरेव व्यवहारस्तु अजात्यमूलक इत्यवधेयम्। संयोगज शब्दस्यासमवाय निमित्त कारणे विभागज शब्दस्यासमवाय निमित्त कारणे निरूपयति एवमिति। आद्य शब्दस्य संयोगजत्वं विभागत्वं वा मध्यमान्त शब्दानां तु शब्दत्वं हेवेत्युत्पपादयति अन्त्येति। शब्दादपि शब्द निष्पत्तौ प्रमाणमः यथोक्तमिति। शब्दस्याकाश गुणत्वात् तस्यैव तत्समवाय कारणत्वमः आद्यादीनाम् इति। स्नेहादिवत् शब्दस्य क्षणिकत्व शंका निवृत्त्यर्थमः कर्मेति। वस्तुतो योग्य विभू विशेष गुणानां श्रोत्तरवर्ति गुणानाश्यत्व नियमात् प्रथम शब्दस्य द्वितीयेन नाशस्तथा तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व रूपं क्षणिकत्व मात्रावधेयम्। तेन शब्दस्य दुक्षणावस्थायित्वमेव बोध्यम् द्युत्प्रत्यक्षत्वानुपत्यापेक्ष बुद्धेरेव दुक्षणावस्थायित्वम् अभ्युपगम्यत् इति भावः। अन्त्यशब्दाविनाशविषये कस्यचित् अभिप्रायमाह अन्त्यस्त्विति फलितार्थमाह तस्मादिति। शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादयतां मीमांसकानां मतनिराकर्तुम् प्रमाणान्तरमपि दर्शयति विनाशित्वं चेति। प्राग्भावे व्याप्तिनित्यत्वस्य लक्षणान्तरं दूषयति नन्विति। वस्तुतः प्राग्भावप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं तदन्यत्वं। प्राग्भावप्रतियोगित्व ध्वंसाप्रतियोगित्वान्यतरत्वं वा नित्यत्वं। तेन ध्वंसे प्राग्भावे च नाव्याप्तिः। योग विषये प्रमाण्यमाशंकते किमिति। अनवस्थादि भयात् सामान्यादीनां सामान्य शून्यत्वमाह सामान्यादिति नन्मनुमानेन शब्दस्य नित्यत्वे साधिते अप्याशुतर विनाशित्वे तस्य दानग्रहणयोर् संभवाध्ययने अध्यापने च प्रवृत्त्यनुपपत्ते ततस्तस्य स्थैर्यम् अभ्युपगन्तव्यम् साजुक्तम् तावत्कालम् स्थिरम् चैनम् कः पश्चान्नाशिष्यति इति एवञ्च स्वयं ककार इति सत्यविज्ञायाः सत्त्वेन सत्यविज्ञा यदा शब्दे जागर्ति निदवग्रह अनित्यत्वानुमानानि सैव सर्वाणि बाधते इत्युक्ते दिशा शब्दस्य नित्यत्वम् इति चेन्न तदेवौषधम् इत्यादिवदुक्त प्रत्यभिज्ञाया साजात्यावलम्बन विषयत्वात् ककार उत्पन्नो विनष्टस्य इत्याकार प्रतिशक्ति सम्भवाच्च शब्दस्य नित्यत्वमेव सुतराम् सिद्ध्यति इति भावः अथ बुद्धेः स्वरूपमाह अर्थेति सर्वविध व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम् बुद्धेर्लक्षणम् रूपादौ अतिव्याप्तिवारणाय विशेषण दलम् कालादौ अतिव्याप्तिवारणाय विशेष दलम् तद्भेदमाह नित्यति रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्व दाश्वरीय बुद्धेर्नित्यत्वमाह एषीति तृतीयक्षणवृत्तिध्वंस प्रतियोगित्वात् जीवात्मीय बुद्धेर्नित्यत्वमाह अन्यदीयेति आत्मा मनसायुते मनः इन्द्रियेण इन्द्रियम् अर्थेन ततो ज्ञानम् उत्पद्यत इति ज्ञानोत्पत्तिक्रमः किन्तु यदा मनः पूरीतन्नामकनाढ्याम् प्रविशति तदा सुषुप्तिः ब्रैकेट में गाढ़ निद्रा जायते तदानीं सर्वथा ज्ञानाभावेन तन्नाडी व्यतिरिक्त प्रदेशे जायमानस्यात्ममनः संयोगस्य ज्ञानम् प्रत्यसमवायिकारणत्वम् बोध्यम् ताञ्चस्तु तन्मनः संयोगस्य तदानीभावान्न ज्ञानोत्पत्ति ततस्तस्य जायमान ज्ञानसामान्यम् प्रत्यसमवायिकारणत्वम् इति वदन्ति यद्यपि मीमांसकाः ज्ञानग्राहक सामग्री मात्रग्राह्यत्व ज्ञानस्य स्वप्रकाशकत्वमभ्युपगच्छन्ति तथापि घटादि विषयक व्यवसायात्मक ज्ञानानन्तरम् घटादि विषय ज्ञानावगाहमित्याकारकानुव्यवसायस्याप्यनुभव सिद्धत्वाग्नैयायिका घटादि ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् न मन्यन्त इत्यवधेयम् सुखम् लक्ष्यति प्रतीतिरिति तथा चान्येच्छानधीनेच्छा विषयत्वम् सुखस्य लक्षणम् तच्च वेदवेत् कर्मानुष्ठान जायमान धर्मजन्यम् इष्टतमस्य सुखस्य सर्वानुराग विषयत्वच्चाह तच्चेति न च दुःखाभावरूपमेव सुखम् अस्तीति वाच्यम् अहम् सुखी इत्याकारक अनुभव विषयस्य तस्य भावत्वेनानुभूयमानत्वात् तथा सति तुल्ययुक्त्या सुखाभावस्यापि दुःखत्वापत्तेः उक्ताभावप्रतियोगिनो सुख दुःखयोर्भावत्वेन श्रीकारमन्तरुक्तकथनास्याप्यसङ्कतेश्चात्मविशेषगुणतया सुखम् सिद्ध्यति इति भावः दुःखम् लक्ष्यति पीडयति अन्यद्वेषानधीनद्वेषाविषयत्वम् दुःखस्य लक्षणम् तच्च वेदनिषिद्धकर्मानुष्ठानजाधर्मजन्यम् दुःखस्य द्वेषविषयत्वच्चाह तच्चेति यथा सुखम् तत्साधनम् च प्रत्यनुरागस्तथा दुःखम् तत्साधनम् च प्रतिदेशोऽपि स्वाभाविकः तच्च दुःखमाध्यात्मिकादिभौतिकादिदैविकभेदात्त्रिविधम् सत्साध्यात्मिकम् ब्रिकट् में आत्मानम् देहमन्तःकरणम् वा अधिकृत्य जायमानम् ब्रिकट् बन्द दुःखम् द्विविधम् शरीरम् मानसम् च तत्राद्यम् शारीरम् वादपित्तश्लेष्मणाम् वैषम्यनिमित्तम् मानसम् कामक्रोधलोभमोहादिजन्यम् द्वितीयमादिभौतिकम् ब्रिकट् में पञ्चभूतविकारजातिमधिकृत्य जायमानम् निकटबंध दुष्ट मनुष्य सिंहा व्याघ्रादिभ्यो जायमानम् तृतीयमादिदैविकम् विकट में देव योनि विशेषानधिकृत जायमानम् विकटबंध यक्ष राक्षस ग्रह वेशादि निमित्त जन्यम् तथाविध दुःखत्रय निमित्तर्थम् शास्त्र विषय विविधानाम् पवित्रेव लोक्यते लोके मुक्तात्मनि ईश्वरे च धर्माधर्म रूपादृष्ट विरहान्न तयोः सुख दुःखानुभव इति हतेच्छा लक्ष्यति राग इति अहम् इच्छामि इत्याकारक प्रत्यक्षीयात्मनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारताश्रयत्वम् तादृश प्रकारतावच्छेदक जातिमत्त्वम् वेच्छाया लक्षणम् नित्यानित्य वेदात् साधिभ्यः तत्रे स्वरेच्छा नित्या किन्तु ज्ञानजनित्वे सति प्रवृत्तिजनकत्वात् जीवात्मन इच्छा अनित्या अभीष्टयो सुख दुखाभावयो फलतया तद्ज्ञानेन जायमाना तद्विषयणी इच्छा मुख्या साधन विषयणी मिथ्या तति फल विषयण्या इच्छाया हेतुत्वात् साधन विषयणी इच्छा च गौरी सा चेष्ट साधनत्व कृति साध्यत्व बलवद निष्ठा निबंधित्व ज्ञानात् जायते इति कांचः वसुता फलेच्छां प्रति फल ज्ञानम कारण उपायेक्षाम प्रतिष्ठ साधनता ज्ञानम कारणम इति न्यायम ज्ञानस्येवेक्षाया क्रोध इति अहम विषम द्वेष्मि इत्याकार प्रत्यक्षीयात्मनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता से तादृश प्रकारता वच्छेदक जातिमत्तम वा द्वेषस्य लक्षणम दुःखस्याभीष्टतया तस्मिन् तत्साधनेषु च द्वेषो जायते सप्तम्योत्तर विषयत्वम् आत्मित्य सुखादीनां सविषयकत्वात् आदौ जनो जानाति तत् इच्छति ततो यतते इति नियमात् सुखादि ज्ञानानन्तरं तद्विषयकेच्छाया तद्विषयकप्रवृत्तिरुत्पद्यते एवञ्च दुःखादि ज्ञानानन्तरं तद्विषयकद्वेषे सति तद्विषयकनिवृत्तिश्च जायते ईश्वरे दुःखाभावेन द्वेषस्याभावात् जीवात्मन्येव तस्य वृत्तित्वं बुद्ध्यम् अथ प्रयत्नस्वरूपमाह उत्साह इति अहम् करोमि वायते इत्याकारक प्रत्यक्षीयात्मनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारतास्यत्वम् तादृश प्रकारतावच्छेदक जातिमत्त्वम् वा प्रयत्नस्य लक्षणम् नित्यादित्य भेदात् सद्विधः तत्त्वस्वरीय प्रयत्नो नित्यः अत एव नित्यज्ञानेच्छाकृत्यन्यतमत्वम् ईश्वरस्य लक्षणम् भवति जीवात्मना प्रयत्नो नित्यः स च त्रिविधः प्रवृत्ति निमित्त जीवनयोनि भेदात् तत्त्वेच्छाजन्यो हितप्राप्त्यनुकूल व्यापारजनकश्च जीवात्मना प्रवृत्तिरूपः प्रयत्न द्वेषजन्यो अहितः परिहारानुकूल व्यापारजनको निवृत्तिरूपः प्रयत्न प्राणसञ्चारानुकूलो जीवनादृष्टजन्यश्च प्रयत्नो जीवनयोनिरूपश्च तृतीयः बुद्ध्यादीनां बहिरिन्द्रियवेद्यत्वात् तेषां प्रमाण्यम् उपपादयति बुद्ध्यादया इति अथ धर्माधर्मो लक्ष्यति धर्माधर्माविति विभिन्न प्रयत्न सत्त्वेपि सुख दुःखयो वैलक्षण्यं विषमतां वानुभूयते जगत् जनैरतः सुखासाधारणं कारणं धर्मः तच वेदभेद कर्मजन्यः एवञ्च दुःखासाधारणं कारणं धर्मः स च वेदनिषिद्ध कर्मजन्यः इति स्वीक्रियते अत एव रमणीयाचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते कपूयाचरणा कपूयां योनि श्वानयोनि शूकर्योनि वः इति शास्त्रोक्तमपि संगच्छते यद्यपि मीमांसकैर्वेदबोधितश्च साधनता को धर्म वेदबोधिता निष्ठ साधनता का धर्म इति धर्माधर्मयोः स्वरूप प्रतिपादनेन वेदभेद कर्मणो धर्मत्वम् वेदनिषिद्ध कर्मणाश्चाधर्मत्वम् व्युत्पादितं भवति तथापि स्वर्गादि सुख दुःखजनकत्वम् परम्परया कर्मणा विकट में आसुतर विनाशित्वेपि तत्तत् कर्मजन्योत्पत्त्य पूर्वसचिव परमा पूर्वेण धर्माधर्म रूपादृष्ट द्वारा वा विकटबंध स्वीकारादुभ योर्मते उक्त भेदो न क्षतिकरः इति बोध्यम् नाभुक्तं चीयते कर्म कल्पकोटिस्तैरपि इति राद्धान्तेन सुखदुःखान्यतर साक्षात्कार रूपभोगस्य शरीरं विना सम्भवात् धर्माधिक्ये दिव्यम् उभयोः साम्ये मानुषम् अधर्माधिक्ये च पशुपक्षादि शरीरमादाय जीवात्मनस्तवन् भवन्तीति मनसि त्रिधायानुमान प्रमाणम् उपस्थापयति तथा हिति धर्माधर्म्या शरीरादुत्पत्त्यो असाधारणकारणत्वं व्युत्पादनाय शरीरादुत्पत्तेः पूर्वं प्रयत्नादीनां सम्भवेन तत्कारणत्वं निराकरोति प्रयत्नादीना अथ संस्कारं लक्ष्यति संस्कारेति तद्भेदमाह संस्कार इति नोदनाख्यसंयोगेन बाणादिषु जायमानायाः क्रियायाः क्षयिकत्वाल्लक्ष्यावधिगमनं तेषाम् असम्भवित्य तस्तेषु क्रियान्तर्जनकं वेगं प्रतिपादयति स चेति स्मृतिपूर्वकस्यानुभवस्य क्षणिकत्वेन स्मरणानुपत्तेः कार्यकारणयोः समानाधिकरण्यनियमाच्च जीवात्मनो गुणं स्मृतिजनकं संस्कारमुपादयति भावनाख्यस्थिति तथा च ज्ञानजन्यत्वे सति स्मृतिजनकत्वं भावनाख्यसंस्कारस्य लक्षणम् उपेक्षात्मकसंशयज्ञानयोः स्मृतिजनकत्वात् तद्वारणयोः उपेक्षान्निश्चयस्य संस्कारहेतुत्वम् इति केचित् वस्तुतः संस्कारं प्रति तत्तद्व्यक्तित्वेनोपेक्षाव्यक्तेः प्रतिबंधकत्वमेव कल्पनीयम् ईश्वरे मुक्तात्मनि च स्मरणासंभवात् संस्कारस्य तदतिरिक्तात्मवृत्तित्वम् इति भावः समानविषयकान्तिमस्मरणेन रोगेण कालेन वा संस्कारस्य नाशः स्मित्यापि संस्कारोत्पत्तिं व्याचक्षते अन्यथा जायते च पुनः पुनः स्मरणाद्दृढतर संस्कार इत्यादि प्राचीन प्रवादो व्यावहन्येत संस्काराणां विद्यमानत्वेऽपि उद्बोधकाभावात् स्मृतिजनकत्वाभावं ज्ञापयन् स्मृतिं प्रति तस्य सहकारिताम् उपवादयति स चेति तथा च प्रबलोद्बोधकाभावात् जन्मान्तरीयं न स्मर्यते सत्त्वेदु स्मर्यत एव यथा मातृस्तन्यपानस्य सुखासाधनत्वं जन्मान्तरीयमतिबलैरिति फलितार्थः तत्र प्रमाणमाह यथोक्तमिति स्थितिवस्थापयतीति स्थितिस्थापकस्य तियो भगवत् पृथिव्यादिषु वर्तते तथोक्तगुणानामधिकरणाकाङ्क्षायामाह एते चेति इति गुणनिरूपणम्। हिंदी। अब पृथ्वी जल तेज और वायु के कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और विनाश क्रम में कहा जाता है। प्राणी के अदृष्ट सहकृत ईश्वरेच्छा से प्रथम परमाणु द्वय का क्रिया से संयोग होने पर द्वयणुक विकट में परमाणु द्वय का कार्य विकटबंध उत्पन्न होता है। द्वयणुक का परमाणु द्वय में समवाय संबंध से उत्पन्न होने से परमाणु द्वय उसका समवाय कारण परमाणु द्वय संयोग असमवाय कारण और अधिष्ठादि निमित्त कारण है। तीन द्वणुक में क्रिया से संयोग होने पर त्रणुक त्रसरेणु उत्पन्न होता है। द्वणुक उसके समवाय कारण द्वणुक संयोग असमवाय कारण और अधिष्ठाद निमित्त कारण है। चार त्रणुक से चतुर्णुक और इस क्रम में उत्तरोत्तर स्थूलतर स्थूलतम महापृथ्वी जल तेज और वायु उत्पन्न होते हैं। कार्य के रूपादि गुण स्वकीय समवाय कारण में रहे हुए रूपाधिक से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कारण के गुण कार्य के गुणों के आरंभक असमवाय कारण होते हैं। यह नियम प्रसिद्ध है। यह हुआ उत्पत्ति क्रम। रूपाद विशिष्ट कार्य द्रव्य घटादिक के अवयव कपालादि में नोदन या अभिघात संयोग से प्रथम क्रिया क्रिया से विभाग होने पर वह अवयवी का असमवाय कारण आरंभक संयोग को नष्ट करता है। बाद में अवयवी कार्य द्रव्य घट का नाश होता है। इस क्रम में असमवाय कारण के नाश से कार्य द्रव्य का नाश दिखलाया। कहीं पर समवाय कारण के नाश से द्रव्य नाश होता है, जैसे प्राणियों के अदृश्य से पूर्वोक्त प्रतिव्यादि नाश के लिए परमेश्वर की विध्वंस कारक इच्छा होने पर परमाणु में क्रिया क्रिया से विभाग होने पर पूर्व संयोग नाश होते ही द्रणुक नष्ट होते हैं। द्रणुक नाश से त्रणुकादि क्रम से महापृथिव्यादि नष्ट होते हैं, जैसे तंतु नष्ट होने से पट का नाश और पट के रूपादि गुणों का पट के नाश होने पर नाश होता है। वैशेषिक कणाद का उपयुक्त पीलु पाक परमाणु रूपायो क्रम से पाक के साथ पीठर भांड द्रणुक घट आदि अवयवी में पाक मानने वाले न्यायिक जैसे पाक होने पर घटाधिक का पुरुष्याम रूप नष्ट होता है और रक्तादि रूप उत्पन्न होते हैं, वैसे आश्रय द्रव्य द्रणुक घटादि नष्ट होने पर भी सच्छिद्र में पाक किसे विरोधी गुण उत्पन्न होने से पूर्व रूपाधिक नष्ट होते हैं। निरवयव परमाणु सद्भाव में क्या प्रमाण है? उसका समाधान यह है कि गवाक्ष विकट में छिद्र विशेष से सूर्य किरण आने पर दृश्यमान सूक्ष्म रजह कण स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य से आरब्ध है, क्योंकि वे घट की तरह कार्य है। मादारम्भ जो है वह जन्य द्रव्य ही होता है। इससे त्रसरेणु का आरंभक द्रणुक भी द्रव्यांतर एवं कार्य है, ऐसा सिद्ध होने पर वह भी स्वल्प परिमाण वाले समवाय कारण से आरब्ध है, क्योंकि घट की तरह कार्य है। इस अनुमान से द्रणुक का आरंभक परमाणु है, ऐसा सिद्ध होता है जिसका आरंभक कोई नहीं है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि कार्य द्रव्य का आरंभक कार्य द्रव्य ही होता है तो परमाणु को भी कार्य द्रव्य से आरब्ध क्यों न माना जाए? उसका उत्तर यह है कि अनंत कार्य परंपरा मानने पर अनवस्था दोष होगा और अंतावयवारब्धत्व सभी कार्य द्रव्य में मानने पर मेरु और सरसों के परिमाण तुल्य ही मानने होंगे। अतः कारण परंपरा का विश्राम परमाणु में मानने से परमाणु किसी से आरब्ध नहीं है, यही सिद्ध होता है। यह आरंभक नहीं होता और तीन चार की कल्पना में युक्ति नहीं, इसलिए द्रणुक परमाणु द्वय से आरब्ध है। त्रसरेणु तीन द्रणुक से ही आरब्ध है। क्योंकि एक आरंभक नहीं होता। दो दणुक से आरंभ द मानने पर त्रिश्रेणु में महत परिमाण जो कि कारण बहुत संख्या प्रयुक्त है उसकी सिद्धि नहीं होगी। कार्यगत महत्व प्रयोजक दो है, कारण महत्व या कारण बहुत। प्रकृत दणुक रूप कारण में प्रथम पक्ष अनुपन्न है, इसलिए द्वितीय पक्ष मानना चाहिए। दणुकत्रय की बहुत संख्या से त्रिश्रेणु में महत्व परिमाण मानने पर अधिक दणुक संख्या त्रिश्रेणु महत्व के लिए आवश्यक नहीं है। सारांश यह है कि महत्व परिमाण का विश्राम जैसे गगनादि में माना जाता है, वैसे अणु परिमाण का विश्राम जिसमें होता है वह परमाणु है। यद्यपि परिमाण स्वजातीय और स्वोत्कृष्ट परिमाण को उत्पन्न करता है, इस नियम से अणुतर और इससे अणुतम मानने पर दणुकारब्ध त्रिश्रेणु रूप कार्य का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। इसलिए न्यायिक उक्त नियम में संकोच करके त्रिश्रेणु परिमाण में दणुक परिमाण को कारण न मानकर कारणगत बहुत संख्या को प्रयोजक मानते हैं। समवाय संबंध से शब्द के अधिकरण को आकाश कहते हैं। शब्द और संख्या आदि पांच गुण विशिष्ट गगन एक व्यापक नित्य और शब्द हेतु से अनुमेय है। आकाश शब्द लिंगक क्यों कहा जाता है? उसका समाधान यह है कि जहाँ संभव हो वहाँ उसका निषेध होने पर अन्यत्र प्राप्ति नहीं होने से जो अवशिष्ट ब्रैकेट में गगन में सम प्रत्यय वह है परिशेष। निर्दिष्ट परिशेषानुमान से शब्दाश्रय गगन ही सिद्ध होता है। जैसे प्रथम शब्द में विशेष गुणत्व की सिद्धि के लिए अनुमान इस प्रकार है, शब्द विशेष गुण है क्योंकि रूप की तरह जात विशिष्ट और हमारी बाह्य एक इंद्रिय से ग्राह्य है। गुण गुणी द्रव्य के आश्रित ही होता है, पृथ्व्यादि चार और आत्मा उसके आश्रय नहीं हो सकते, इसलिए कि शब्द श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है और पृथ्वी जल तेज और वायु के जो रूपाधिक गुण है वे श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्रोत्र ग्राह्य होने से इन पांच का गुण नहीं, विशेष गुण होने से दिशा काल और मन का गुण नहीं है, इसलिए इन अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त उनका आश्रय द्रव्य मानना चाहिए। वही आकाश है, उसके भेद में प्रमाण न होने से वह एक है। आकाशत्व धर्म का आश्रय आकाश एक होने से वह धर्म सामान्य जाति नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामान्य अनेक में रहता है। आकाश व्यापक महत्व परिमाण वाला है, इसलिए उसका कार्य शब्द सर्वत्र उपलब्ध होता है। व्यापक होने से वह नित्य है। धर्म को जाति भिन्न जाति या धर्मी को जातिमान होने में बाधक कारण यहाँ पर सदृष्टान संक्षेप में दिए जाते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति का अभेद जातित्व का बाधक है, यानी जिस धर्म का आश्रय व्यक्ति एक हो वह धर्म जाति नहीं माना जा सकता। जैसे गगनत्व धर्म का आश्रय व्यक्ति एक है, इसलिए गगनत्वादि में जातित्व नहीं रहेगा। आश्रय व्यक्ति यदि समान हो तो दो धर्म भिन्न भिन्न जाति नहीं हो सकते। जैसे घटत्व और कलशत्व आश्रय तुल्य है, इसलिए घटत्व और कलशत्व नामक जाति नहीं मान सकते। निष्कर्ष यह है कि तुल्यत्व धर्मांतर का समान देश में रहना जाति भेद यानी जाति द्वय का बाधक है। एक दूसरे के अभाव के साथ रहते हुए धर्मद्वय का कहीं पर एक साथ में रहना यह है संस्कार सांकर्य जो कि जातित्व का बाधक है। जैसे पृथ्व्यादि पांच भूत और क्रियावान होने से पृथ्व्यादि चार तथा मन मूर्त कहे जाते हैं। भूतत्वा भाव वाले मन में मूर्तत्व और मूर्तत्वा भाव वाले आकाश में भूतत्व है। इस तरह परस्परात्यंता भाव समानाधिकरण भूतत्व और मूर्तत्व नामक धर्मद्वय पृथ्व्यादि चतुष्टय में साथ में रहते हैं, इसलिए भूतत्व और मूर्तत्व में जातित्व रहेगा नहीं, अर्थात वे जाति नहीं है। अप्रमाणिक अनंत पदार्थ की कल्पना रहने पर भी विश्रांति विराम न मिले उसे अनवस्था कहते हैं, जो जातित्व में जातित्व का बाधक है। जैसे घटत्व पटत्वादि जाति में रहने वाले जातित्व धर्म को जाति मानने की कल्पना उत्तरोत्तर चलती रहने पर विश्रांति नहीं होगी, इसलिए जातित्व धर्म को जाति नहीं मान सकते। रूप स्वरूप यानी संरक्षण की हानि विशेष में जातिमत्व का बाधक है। जैसे यह परमाणु उस परमाणु से भिन्न है इसलिए कि उसमें विशेष है, विशेष में यदि विशेषत्व नामक जाति मानी जाए तो तादृश सामान्याश्रय विशेष तत्त्व ब्रैकेट में उन उन परमाणुओं का भेद नहीं हो सकता और स्वाश्रय परमाणु भेदक उन उन विशेषों में स्व्यावर्तकत्व यानी अपनी व्यावृत्ति अपने से करना या स्वकीय स्वरूप की हानि होगी। अतः परिचार्थ यह हुआ कि विशेषत्व जाति नहीं है। असंबंध यानी अनुयोगिता या प्रतियोगिता संबंध से समवाय का न होना जातिमत्व का बाधक है। जैसे समवाय और अभाव समवाय संबंध से न तो कहीं रहते हैं या न तो उसमें कोई समवाय से रहता है, अर्थात न वे समवाय से आधेय हैं या अधिकरण, अतः समवाय और अभाव में जाती रहेगी नहीं। इसलिए फलदात यह हुआ कि समवायत्व और अभावत्व धर्म में जातित्व अभाव है। दिग्विपरीत परत्व ज्येष्ठत्व और दिग्विपरीत अपरत्व कनिष्ठत्व ये काल अनुमेय अनुमान से सिद्ध है। संख्यादि पांच उसके गुण है, वह एक नित्य और व्यापक है। दिग्विपरीत परत्वापरत्व से काल कैसे अनुमेय है उसको बतलाते हैं। वृद्ध व्यक्ति समीप पास में होने से उसमें होने योग्य दैशिक अपरत्व से विपरीत कालिक परत्व वड़प्पन प्रतीत होता है। युवक दूर होने से उसमें होने योग्य दैशिक परत्व से विपरीत कालिक अपरत्व छोटापन प्रतीत होता है। भाव कार्य के तीन कारण होते हैं, यह नियम प्रसिद्ध है। कालिक परत्वापरत्व घट की तरह भाव कार्य होने से उसका समवाय कारण पिंड और असमवाय कारण रवि क्रिया विशिष्ट तादृश काल पिंड संयोग मानना होगा, जिसका आश्रय काल है अथवा अत्यधिक रवि क्रिया विशिष्ट यह शरीर है। ऐसा ज्ञान होने पर दिग विपरीत कालिक परत्व स्वल्प रवितर क्रिया विशिष्ट यह है। ऐसा ज्ञान होने पर दिग विपरीत कालिक अपरत्व उत्पन्न होता है। रवि सूर्य की क्रियाओं का शरीर से साथ सीधा संबंध नहीं है, किंतु संबंध के बिना विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उनका स्वसमवाय संयुक्त संयोग रूप परंपरा संबंध माना जाता है, जिसका घटक काल ही सिद्ध होता है। यहाँ स्वपद से रवि क्रिया उसका समवाय रवि रवि संयुक्त व्यापक काल का शरीरादिक के साथ संयोग संबंध है। यद्यपि यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि तादृश परत्वापरत्व का असाधारण कारण दिशा क्यों नहीं, तो उसका समाधान यह है कि वह तो मूर्त द्रव्य के संयोग का ही उपनायक विशेषणतया घटक है। प्रतिव्यादि व्यापक न होने से आकाश और आत्मा को उपनायक मानने पर यानी अन्य धर्म तपन परिस्पंद से अन्य को संबंधित करने में क्षम मानने पर कश्मीर में रहे हुए कुमकुम राग से कर्नाटक के चक्रवर्ती के कर कमल रंजित होने चाहिए, यह आपत्ति होगा। यद्यपि पूर्वदत्त दोष काल को मानने पर भी तो होगा। इसका समाधान यह है कि तादृश क्रियोपनायक काल रूप धर्मी मानने पर अन्यथा सिद्ध है। फलता से यह है कि परत्वापरत्व विशिष्ट बुद्धि नियामक असाधारण निमित्त कारण काल ही अनुमित होता है। काल एक होने पर भी भूत नष्ट क्रियोपलक्षित वह भूत वर्तमान क्रिया वच्छिन्न वह वर्तमान और भाव क्रियोपलक्षित वह भविष्य संज्ञा का घटा आदि जन्य पदार्थों की तरह प्राप्त होता है। जैसे एक ही पुरुष पाक क्रिया करने से पाचक पाक करता, यजन क्रिया योग से याजक याग करता और पठन क्रिया से पाठक कहा जाता है। विभु अपरिछिन्न आकाश घट और मठादि रूप उपाधि से घटाकाश और मठाकाश आदि सीमित संज्ञा को प्राप्त करता है। वैसे ही क्रिया रूप उपाधि भेद से अखंड काल भी क्षण पल दंड दिन अहोरात्र पक्ष आदि रूप से परिच्छिन्न सीमित कहा जाता है। उसमें क्रियोत्पत्ति कारक क्षण क्षण समुदाय पल पल समुदाय दंड सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत काल दिन सूर्यास्त से सूर्योदय तक का काल रात्रि रात्रि दिवस से अहोरात्र पंद्रह अहोरात्र से पक्ष पक्षद्वय से मास मासद्वय से ऋतु तीन ऋतु से अयन अयनद्वय से वर्ष वर्षों से युग युग से मनवंतर मनवंतर से कल्प जो कि ब्रह्मा का दिवस माना जाता है। इसी काल में सृष्टि उत्पन्न और विलीन होती है, इसलिए सब जगत का आधार काल आकाश के तुल्य विभू और नित्य है। काल विपरीत परत दूरीपन और काल विपरीत अपरत समीपता से दिशा अनुमेय है। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि कालिक परत्वापरत्व बुद्धि में अवधि की अपेक्षा नहीं करती, परंतु दैशिक परत्वापरत्व बुद्धि में अवधि की अपेक्षा रहती है। इसलिए सिद्धपुर से काशी की अपेक्षा कलकत्ता दूर है, यहाँ पर काशी रूप अवधि है। अतः सिद्धपुर से लेकर काशी तक के मूर्त द्रव्य संयोग की अपेक्षा सिद्धपुर से लेकर अधिक मूर्त द्रव्य संयोग विशिष्ट कलकत्ता है। ऐसा ज्ञान होने पर कलकत्ता में दैशिक परत्व और काशी में दैशिक परत्व प्रतीत होता है। होने वाली इस विशिष्ट बुद्धि का नियामक साक्षात संबंध न होने से स्वसमवाय संयुक्त संयोग रूप तादृश परंपरा संबंध मानना होगा, अन्यथा विशिष्ट बुद्धि होगी नहीं। फलितार्थ यह हुआ कि तादृश परंपरा संबंध घटक दिशा नामक द्रव्य सिद्ध होता है। यहाँ पर स्वपद से वे मूर्त संयोग मनुष्य का समवाय मूर्त द्रव्य उससे संयुक्त दिशा है, जिसका संबंध परत्वापरत के आश्रय कलकत्ता और काशी से है। वह एक नित्य और व्यापक है। संख्या आदि पांच उसके गुण हैं और पूर्व पश्चिम आदि ज्ञान का साधारण निमित्त कारण आकाश काल आत्मा प्रतिव्याद नहीं है, अतः दिशा अनुमित होती है। जैसे किसी मूर्त विशेष को अवधि मानकर यहाँ इससे पूर्व है, यह इससे पश्चिम है, ऐसा दिशा और मूर्त के लिए व्यवहार होता है। यानी जो मूर्त जिसकी अपेक्षा उदयगिरी सूर्योदय तक की क्षितिज रेखा की पास में होगा, वह मूर्त उस मूर्त से पूर्व कहा जाता है। जो कि मूर्त उसकी अपेक्षा उदयगिरी से दूर होगा, वह मूर्त उसकी अपेक्षा पश्चिम माना जाता है। जो मूर्त जिसकी अपेक्षा मेरु के पास है, वह उससे उत्तर, और जो मूर्त जिसकी अपेक्षा मेरु से दूर, वह उससे दक्षिण कहा जाता है। उसका नियामक काल इसलिए नहीं हो सकता कि काल में क्रियोपानायकत्व है, संयोगपनायकत्व नहीं, और कालिक परत्वापरत्व नियत यानी सबकी बुद्धि में समान किंतु दैशिक परत्वापरत्व या पूर्वता और पश्चिमता अनियत है। उसमें सबकी बुद्धि में समानता नहीं होती। एक जिसको पूर्व करता है, दूसरा उसको ही पश्चिम अपेक्षाकृत कह सकता है, इसलिए उसका साधारण कारण काल नहीं हो सकता। प्रतिज्ञादि अव्यापक होने से आकाश आत्मा को उपनायक मानने पर विभिन्न देश स्थिति कुमकुम राग की विभिन्न देश स्थिति स्फटिक में प्राप्ति रूप आपत्ति होगी, इसलिए परिशेष से दिशा नामक द्रव्य सिद्ध होता है। उपाधि से मूत्र द्रव्य की तरह दिशा भी पूर्व पश्चिम आदि संज्ञा को प्राप्त होती है। आत्मत्व जात विशिष्ट को आत्मा कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा भेद से वह दो प्रकार की है। उसमें जीवात्मा शरीर भिन्न इसलिए है कि सबके सुख दुखादि विलक्षण उसको व्यापक और नित्य मानने की युक्तियों का निर्देश प्रथम किया गया है। प्रसंगता ईश्वर का निरूपण संक्षेप में किया जाता है। इस विषय में ईश्वर को नहीं मानने वाले चार्वाक आदि का मंतव्य यह है कि रूप या स्पर्श रहित ईश्वर चक्षुरादि बहिरिंद्रिय से वेद्य नहीं हो सकता। परात्म व्यावृत स्वकीय आत्मना संयोग से विशेष गुण को लेकर स्वकीय आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो सकता है, परकीय नहीं। अतः अंतर इंद्रिय जन्य मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। व्यवचारक ग्रह पूर्वक सहचारक ग्रह से व्याप्ति ज्ञान होने पर अनुमान होता है। ईश्वर के साथ किसी भी हेतु का पूर्वोक्त नियत सहचारक ग्रह नहीं है, अतः ईश्वर का अनुमान विषय होगा नहीं। उपमानक प्रमाण सादृश्य ज्ञान के बिना उपमिति जनक नहीं होता। ईश्वर तुल्य और कोई नहीं, अतः उसका भी विषय वह नहीं है। आप तो चरित शब्द प्रमाण होने से ईश्वर प्रतिपादक वेद का प्रमाण परमाप्त महेश्वरोच्चारित होने से ही तो है। जब ईश्वर के अस्तित्व में ही संदेह है, ऐसी परिस्थिति में उस वेद वाक्य के आधार पर ईश्वर की सिद्धि तो सर्वथा नहीं हो सकती। निष्कर्ष यह है कि न्याय न सम्मत किसी प्रमाण से ईश्वर सिद्ध न होने पर ईश्वर नहीं है, यह सिद्ध होता है। प्रयुक्त पूर्व पक्ष का समाधान यह है कि कार्य मात्र कर्ता से जन्य है, यानी जिसमें कार्यत्व धर्म रहेगा उसमें कार्य जन्यत्व अवश्य रहेगा। यह व्याप्ति नियम अबाधित रूप से घटपटादि कार्य में सर्वत्र देखा गया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भूमंडल अंकुरादि कर्ता से जन्य है, इसलिए कि वे घट की तरह कार्य है। हमारी कृति से उसका निर्माण रचना आदि नहीं हो सकता, अतः उसके उपादान कारण का ज्ञान वाला प्रत्यशील जो निर्माता वह है ईश्वर। इस तरह अनुमान से सिद्ध ईश्वर से उच्चारित वैदिक वाक्य भी उसके प्रमापक हो सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि अनुमान और शब्द प्रमाण से ईश्वर सिद्ध होता है। मनस्तु धर्म जिसमें रहे उसे मन कहते हैं। वह अणु परिमाण वाला है, इसलिए मध्यम परिमाण वाले घट की तरह अनित्य होते हैं, और परम महत परिमाण वाला मानने पर विबुद्ध संयोग मानना होगा, एवं काल में ही चक्षुषादि प्रत्यक्ष होगा जो अनुभव विरुद्ध है। सतपत्र वेदनादि या योग पद्याभिमान वस्तुतः भ्रम है। चंचल मन के वेग से व्यवधान प्रतीत नहीं होता। अन्यथा सुषुप्ति जब मन पूरी तत् नाड़ी में प्रविष्ट होता है, वह स्थिति काल गाढ़ निद्रा होगी नहीं, सर्वदा सब ज्ञान साथ में ही होंगे। इसलिए मन अरूप परिमाण वाला है। आत्मा से मन का संयोग मन का इंद्रियों से संयोग इंद्रियों का विषय से संबंध होने पर ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान मात्र में आत्मना संयोग अपेक्षित है। अतः मन आत्मा से अन्यापेक्षा अधिक संबद्ध माना जाता है। आत्मा और उसके विशेष गुण का प्रत्यक्षजनक होने से ही मन को अंतरिंद्रिय कहते हैं। विषयासक्त वह बंद तथा अनाशक्त मोक्ष का हेतु है। सुख दुख साक्षात्कार का वह साधारण कारण होने से करण कहा जाता है। वह नित्य है और द्रव्य होने से संख्यादि अष्ट गुण विशिष्ट है। मन के साथ संबंध होने पर ही बहिरिंद्रियां विषय का प्रत्यक्ष कर सकती हैं। प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान में भी मन साधन है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता परंतु अनुमान से वेद्य है। जैसे सुखादिक का साक्षात्कार चक्षुरादि से अतिरिक्त करण से साध्य है, इसलिए कि चक्षुरादि न होने पर भी छिदा देखने विभाग की तरह वह होता है। जो वस्तु जिसके न रहने पर भी अन्य करण से साध्य है, वह कुठार के बिना वाणी आदि से उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया की तरह अन्य करण से साध्य है। इसका यह है कि सुखादिक साक्षात्कार का चक्षुराधिकरण नहीं है, अतः उनसे भिन्न जो करण वह है मन। संक्षेप में यह द्रव्य निरूपण समाप्त हुआ। द्रव्य निरूपण के अनंतर अब गुण निरूपण किया जाता है। समवाय कारण द्रव्य और कर्म से भिन्न जातिमान को गुण कहते हैं। निष्कर्ष यह है कि द्रव्य कर्म और गुण में ही जाति रहती है। द्रव्य कर्म से भिन्न सामान्य विशिष्ट अवशिष्ट गुण ही होगा। समवाय संबंध से गुण का अधिकरण द्रव्य ही है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्ता परत गुरुत्व जबत स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार को लेकर 24 प्रकार के गुण हैं। उनमें केवल चक्षु से ग्रहण करने के योग्य जो विशेष गुण वह रूप है। यहाँ पर ज्ञातव्य यह है कि जिस इंद्रिय से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसमें रहने वाली जाति और उसके अभाव का भी उस इंद्रिय से बोध होता है। इस नियम से केवल चक्षु इंद्रिय से वेद रूपत्व जाति भी होगी, उसको लेकर लक्षण अतिव्याप्त न हो इसलिए विशेष दल का उपादान किया है। यद्यप गुण पदोपादान करने से रूपत्व जाति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, परंतु प्रभाकर संयोग से वारण करने के लिए विशेष पद का ग्रहण करना चाहिए। संयोग सामान्य गुण है, रसाद विशेष गुण में अतिव्याप्ति न हो इसलिए चक्षुर मात्र ग्रह कहना चाहिए। जलीय सांसिद्धिक द्रवत्व विशेष गुण होने पर भी केवल चतुर्वेद नहीं है, भगिंद्रिय से भी उसका ज्ञान होता है, अतः मात्र पद देने से लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा। पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में रूप रहता है। शुक्ल व्यकरण में शुभ्रता, नील व्यकरण में श्यामता, पीत व्यकरण में पीलापन, रक्त व्यकरण में लालिमा, हरित व्यकरण में हरापन, कपिश व्यकरण में भूरापन और चित्त व्यकरण में चितकबरा। भेद से वह 7 प्रकार का है। सप्तविध रूप का आश्रय पृथ्वी है। नित्या नित्योभयविद पृथ्वी में रहने वाले शुक्लादि रूप पाकज अग्नि संयोग से परावृत होने से अनित्य है। जली और तेजस परमाणु में रहने वाला शुक्ल रूप नित्य था, उसके दंडकादि कार्य में रहने वाला रूप अनित्य है। तेज में रहने वाला अपाकज शुक्ल रूप भास्वर यानी पर प्रकाशक है और जल में वही अभास्वर है। यमुनादि जल में रहने वाली कृष्ण रूप प्रतीति औपाधिक है, अन्यथा उसको आकाश में फेंकने पर शुभ्रता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जैसे लेह आदि बेकट में चटनी आदि अवयवी में विचित्र रस न मानकर अवयव के रस का ही अनुभव होता है, ऐसा माना जाता है कि उसी तरह सप्तम चित्र रूप अवयवी में न मानकर अवयव के रूप से निर्वाह क्यों न किया जाए। उसका समाधान यह है कि द्रव्य चक्षुष प्रत्यक्ष के लिए समवाय संबंध से द्रव्य में रूप का रहना आवश्यक है, अन्यथा अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, अतः सप्तम चित्र रूप मानना आवश्यक है। रसनेन्द्रीय से वेद्य जो विशेष गुण उसको रस कहते हैं। रसनेन्द्रीय से वेद्य सत्व जाति की पूर्वक नियम से, अतः विशेष गुण जो कि विशेष दल है उसका ग्रहण करना चाहिए। विशेष गुण मात्र कथन से गंधा आदि गुण भी विशेष गुण होने से लक्षण अतिव्याप्त होगा, इसलिए रसनेन्द्रीय वेद्य यह विशेष दल का ग्रहण करना चाहिए। वह पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी में रहने वाला रस मधुर विकट में मिठास, अम्ल विकट में खट्टापन, लवण विकट में खारापन, कटु विकट में तीतापन, कषाय विकट में कसैलेपन और तिक्त विकट में कड़ुआपन को लेकर 6 प्रकार का है जो कि पाकज है। विकट यहाँ पर प्रश्न यह हो सकता है कि जिस तरह भिन्न भिन्न रूप विशिष्ट अवयवों से बने हुए अवयवी में चित्त रूप माना जाता है, उसी तरह भिन्न भिन्न रस विशिष्ट अवयवों से बने हुए अवयवी विकट में चटनी आदि में चित्र रस क्यों न माना जाए। उसका उत्तर यह है कि अवयवी में चित्र रूप मानने पर सर्वानुभूत उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बहिरेन्द्रीय से द्रव्य प्रत्यक्ष में समवाय संबंध से रूप का रहना अपेक्षित है। निष्कर्ष यह है कि उस द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना नहीं चाहिए, यह आपत्ति है। किंतु अवयवी में चित्र रस न मानने में आपत्ति या मानने में प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अतः चित्र रस नहीं है यही सिद्ध होता है। इस विचार करने पर ज्ञात होता है कि खट्टे मीठे तीते दशरेणु से बने हुए चतुर्णुक के रस का प्रत्यक्ष चित्र रस न मानने पर होगा नहीं, यह आपत्ति यहाँ पर भी है। इसलिए कि दशरेणु रूप अवयव का रूप प्रत्यक्ष होता है, रस प्रत्यक्ष नहीं, और अवयवी चतुर्णुक में चित्र रस मानते हैं, इसलिए चित्र रस भी मानना चाहिए, यह भी मंतव्य है। जल में अपाकज मधुर ही रस है, कभी उसमें अन्य रसों की अनुभूति पार्थिव अवयव के संबंध को लेकर ही है। जलीय परमाणु का रस नित्य और जलीय द्रुणकादि का नित्य है। घ्राणेन्द्रीय से गेय जो विशेष गुण से गंध करते हैं वह पृथ्वी में ही रहती है और पाकज होने से अनित्य है। सुरभि असुरभि भेद से गंध दो प्रकार की, जलादि में गंध न होने पर भी स्वाश्रय संयुक्त समवाय रूप परंपरा संबंध से प्रतीत होने वाली वह पृथ्वी की होने से औपाधिक है। तो गंधी मात्र से भेद जो विशेष गुण उसे स्पर्श करते हैं, यहाँ पर जलीय सांसिद्धिक द्रवत्व भी भगिंदी वेद्य और विशेष गुण होने से उक्त लक्षण अतिव्याप्त होगा, इसलिए लक्षण में मातपद का उपादान किया है। शीत उष्ण और अनुष्णाशीत भेद से वह तीन प्रकार का है। शीत स्पर्श जल में, उष्ण स्पर्श तेज में, और अनुष्णाशीत स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। पृथ्वी में रहने वाला वह स्पर्श पाकज तथा वायु में अपाकज है। पाकज होने से नित्यानित्य उभयविध पृथ्वी का स्पर्श अनित्य है। जलीय तेजस वायवी परमाणु का स्पर्श नित्य तथा जलीय तेजस वायवी द्रोणकादिक का अनित्य है। इन्हीं रूप रस गंध तथा स्पर्श चारों का प्रत्यक्ष हो सकता है, जो कि महत परिमाण के साथ समवाय संबंध से रहते हुए उद्भूत विकट में व्यक्त हैं। फलितार्थ यह है कि अणु परिमाण विशिष्ट में उद्भूत रूपादिक का महत परिमाण विशिष्ट में अनुद्भूत रूपादिक का प्रत्यक्ष होगा नहीं, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष में महत परिमाण और उद्भूत रूपादिक का होना आवश्यक है। घटादिक द्रव्य में एकत्वादि प्रतीति का असाधारण कारण जो सामान्य गुण उसे संख्या कहते हैं, जो कि एकत्व से परार्थ पर्यंत है। एकत्व दो प्रकार का है, नित्य में रहने वाला नित्य और अनित्य में रहने वाला अनित्य, जो कि अपने समवाय कारण के एकत्व से उत्पन्न होता है। द्वित्वादि संख्या तो अनित्य ही है, पिंडद्वय में यह एक है यह एक है, इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि से भिन्न उत्पन्न होता है। द्वित्व के असमवाय कारण दो द्रव्य हैं तथा द्रव्य द्वय के दो एकत्व असमवाय कारण हैं और अपेक्षा बुद्धि निमित्त कारण है। अपेक्षा बुद्धि नष्ट होने से द्वित्व नष्ट होता है। इस तरह त्रित्व से लेकर परार्ध पर्यंत संख्या भी अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है तथा अपेक्षा बुद्धि के नाश से नष्ट होती है। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि संख्या गुण होने से उसका समवाय संबंध से अधिकरण द्रव्य नहीं है, न कि गुण कर्म आदि, तथापि पर्याप्ति या स्वरूप संबंध से वह भी उनमें रहती है। यही मानकर गुण 24 हैं, कर्म 5 हैं, सामान्य 2 हैं, इस प्रकार का व्यवहार शब्द प्रयोग होता है। इस द्रव्य का इतना परिमाण है, यानी इतनी लंबाई या चौड़ाई है, इस प्रकार के मान का साधारण कारण को परिमाण कहते हैं। अणुत्व विकट में अति स्वल्प परिमाण, महत्व विकट में बड़ा, दीर्घत्व विकट में लंबाई, ह्रस्वत्व विकट में छोटेपन, भेद से परिमाण 4 प्रकार का है, जिसका अधिकरण द्रव्य ही है। काले द्रव्य में उत्पन्न होने वाले परिमाण का कारण कहीं पर अवयवों की संख्या, कहीं पर अवयव परिमाण तथा कहीं पर अवयवों का शिथिल संयोग है, जिसे दृष्टांत क्रम से दिया जाता है। जैसे ईश्वरीय अपेक्षा बुद्धि जन्य परमाणुगत द्वित्व संख्या से द्वणुक परिमाण और द्वणुकगत त्रित्व संख्या से त्रिश्रेणु परिमाण उत्पन्न होते हैं। चतुर्णुक आदि का परिमाण अपने अपने आश्रय चतुर्णुक आदि के समवाय कारण त्रिश्रेणु के परिमाण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कारण के परिमाण से कार्य में परिमाण उत्पन्न होता है। रुई के ढेर का परिमाण जो कि अपने आश्रय का समवाय कारण जो अवयव उसके शिथिल संयोग से जन्य है, परमाणु का परिमाण जो कि अत्यंत सूक्ष्मतम है, तथा आकाश आदि का परिमाण जो कि परम महत है, नित्य है। अतः फलितार्थ यह हुआ कि दणुक के मध्यम अणुपरिमाण तथा घटादिक के मध्यम महत परिमाण अनित्य हैं। निष्कर्ष यह है कि अनित्य अवयविगत परिमाण कहीं पर अवयव की संख्या से या अवयवगत परिमाण से या अवयवगत प्रचय शीतल संयोग से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर संदेह है कि दणु तथा त्रिश्रेणु के परिमाण का कारण भी अवयवी परिमाण क्यों न माना जाए। उसका समाधान यह है कि परिमाण अपने समान अपने जाति के उत्कृष्ट परिमाण का जनक है। इस नियम से दणुक अणुतर तथा त्रिश्रेणु अणुतम मानना होगा, जिससे त्रिश्रेणु का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्ष के लिए महत परिमाण अपेक्षित है। इसलिए कारण गुण क्रम से दणुक तथा त्रिश्रेणु का परिमाण जन्य है, यह न मानकर कारणगत संख्या प्रयुक्त उनके परिमाण मानने चाहिए। यह सिद्धांत स्थिर किया गया है या इससे पृथक है। इस प्रकार के व्यवहार का जो असाधारण कारण वह पृथक तो है, जो कि दो प्रकार का है, एक पृथक और द्विपृथक आदि। इनमें एक पृथक जो कि नित्य में रहता है और नित्य तथा जो कि अनित्य में रहता है वह अनित्य है, द्विपृथक आदि अनित्य ही है। यद्यपि किसी का मंतव्य है कि पृथक्त्व अन्योन्याभाव स्वरूप ही है, न कि तदातिरिक्त गुण, किंतु उसका यह मंतव्य युक्तियुक्त इसलिए नहीं है कि घटपट नहीं है। इस प्रतीति से विलक्षण घट से पट पृथक है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, तथा घटीय रूप घट नहीं है यह प्रयोग होता है, परंतु घटीय रूप घट से पृथक है इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता, यही उनका भेद है। अतः पृथक्त्व भेद से अतिरिक्त गुण है, ये दोनों संयुक्त हैं इत्यादि व्यवहार का जो असाधारण कारण वह संयोग है। संयोग साधारण गुण होने से सभी द्रव्य में रहता है, दूर द्रव्य के प्रत्यक्ष के बिना उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। संयोग अव्याप्त वृत्ति इसलिए है कि अपने अभाव के साथ रहता है, जैसे एक ही वृक्ष में शाखा उच्छेदन कब संयोग और मूलाच्छेदन कब संयोगाभाव है, वह तीन प्रकार का है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज। इनमें सक्रिय पक्षी के साथ निष्क्रिय वृक्ष पर्वतादिक का संयोग अन्यतर कर्मज, विकट में दो में से एक की क्रिया से होने वाला विकट बंद संयोग है, तथा सक्रिय दो पहलवानों का संयोग उभय कर्मज, विकट में दोनों की क्रिया से जायमान विकट बंद संयोग है, एवं कारण और अकारण के संयोग से होने वाला कार्य और अकार्य का संयोग संयोगज का संयोग है। जैसे शरीर का कारण हस्त तथा उसका कारण वृक्ष, इन दोनों के संयोग से जायमान शरीर रूप कार्य तथा वृक्ष रूप अकार्य का संयोग, विकट में क्रिया से उत्पन्न होने वाले ये संयोग अभिघात और नोदन नामक दो प्रकार के हैं। इनमें अभिघात संयोग शब्दाधिक का तथा नोदन संयोग क्रिया आदि का जनक है। ये दोनों विभक्त है। इस प्रकार के व्यवहार का असाधारण कारण या संयोग नाशक गुण को विभाग कहते हैं। वह संयोग पूर्वक इसलिए है कि जिन दोनों का संयोग नहीं है वे विभक्त भी नहीं कहे जाते, यही साधारण नियम है। यहाँ पर शंका हो सकती है कि हिमाचल और विंध्याचल विभक्त है, इस प्रकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का कभी संयोग नहीं है। उसका समाधान यह है कि जैसे तैल शब्द का प्रयोग तिलोद्भव के लिए मुख्य है और सारसप के लिए गौड़ है, वैसे प्रकृति में संयोगाभाव को लेकर विभक्त शब्द का प्रयोग गौड़ार्थक है। इस विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि संयोग संभावना प्रयुक्त ही उक्त स्थल में विभक्त प्रत्यय होता है। संयोग के समान विभाग का ही आश्रय व्यक्तिद्वय है, वह भी सभी द्रव्य में रहता है तथा तीन प्रकार का है, अन्यतर कर्मज, उभय कर्मज और विभागज। इनमें सक्रिय बाज प्रभृति पक्षी की क्रिया से जायमान निष्क्रिय पर्वतादिक का विभाग अन्यतर कर्मज है, सक्रिय दो पहलवानों का विभाग उभय कर्मज है, तृतीय विभागज विभाग दो प्रकार का है, कारण मात्र विभागज विभाग तथा कारणाकारण विभागज विभाग। इनमें क्रिया से घट के कारण भूत कपालद्वय का विभाग होने पर उत्पन्न होने वाला कपाल रूप कारण और पूर्व देश रूप अकारण का विभाग कारण के ही विभाग से जन्य होने के कारण कारण मात्र विभागज विभाग कहा जाता है एवं शरीर का कारण हस्त और उसका अकारण वृक्ष इन दोनों के विभाग से जायमान शरीर रूप कार्य और वृक्ष रूप अकार्य का विभाग कारणाकारण विभागज विभाग है जिसका उल्लेख ग्रंथ में तृतीय विभागज के रूप में किया गया है। इस विषय में ज्ञातव्य यह है कि पृथ्वी के पाकज रूपा चतुष्टय को लेकर पीलपाकवाद और पीठरपाकवाद नामक दो वाद प्रचलित हैं। इनमें पीलपाकवाद को मानने वाले वैशेषिकों का यह मंतव्य है कि जब तक अवयवी से अवस्टब्ध अवयव एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक विलक्षण तेज संयोग से अवयवी में पूर्व रूपादिक की परावृत्ति यानी रूपांतरोत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः मानना होगा कि विलक्षण तेजस संयोग से प्रथम क्रिया क्रिया से अवयव विभाग विभाग से द्रव्यारंभक संयोग नाश तदनंतर अवयवी के नष्ट होने पर अवयव भूत परमाणुओं में रूप की परावृत्ति होती है। पुनः भोक्ता के अदृष्ट से अवयव परमाणु में क्रिया से अवयवी उत्पन्न होने पर उनमें कारण गुण क्रम से रूपाधिक उत्पन्न होते हैं। इस तरह नष्ट होकर पुनः उत्पद्यमान अवयवी में रूपांतरोत्पत्ति होने में कुछ क्षण का विलंब अवश्य होगा जिसका आश्रय लेकर अनेक मतभेद हैं। कारण मात्र विभागज विभाग को स्वीकार करने वाले उक्त विभाग के लिए यदि अवयव भाग को अवयवी द्रव्य के नाश की अपेक्षा है ऐसा मानेंगे तो अवयवी नाश से लेकर रूपांतरोत्पत्ति में 11 क्षण होंगे। अवयव विभाग यदि द्रव्यारंभक संयोग के नाश की अपेक्षा करेगा तो 10 क्षण तथा विभागज विभाग न मानने पर 9 क्षण का विलंब होता है। इसका विशेष निरूपण न्याय मुक्तावली ग्रंथ में है। पीठरपाकवाद को मानने वाले न्यायिक घटादिक को सच्छिद्र मानते हैं अतः सच्छिद्र अवयवी में एक साथ तेजस संयोग से रूपांतरोत्पत्ति होने में कोई बाधक नहीं है इसलिए परमाणु रूपावयव क्रम से रूपांतरोत्पत्ति वे नहीं मानते। इस प्रकार अपेक्षा बुद्धि जन्य द्वित्वोत्पत्ति पाकज रूपाधिक की उत्पत्ति तथा विभागज विभाग समझने में जिसकी बुद्धि कुंठित नहीं होती उन्हीं को पूर्वाचार्यों ने वैशेषिक विद्वान कहा है। यह पर है यह अपर है इस प्रकार के व्यवहारों का जो असाधारण कारण विक्रम से परत्व तथा अपरत्व है। दैशिक और कालिक भेद से वे दो प्रकार के हैं। इनमें दैशिक परत्व और अपरत्व की उत्पत्ति मूर्त द्रव्य में ही होती है जो इस प्रकार है दिक्पिंड संयोगाल्पत्व ज्ञान से एक ही दिशा में स्थित पिंडद्वय को लेकर यह इससे सन्निकृष्ट है इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होने पर दैशिक अपरत्व तथा दिक्पिंड संयोग भूयस्थ ज्ञान से यह विप्रकृष्ट विकट में दूरस्थ है ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने पर दैशिक परत्व उत्पन्न होता है। संयुक्त संयोगाल्पीयत्व और संयुक्त संयोग भूयस्थ ज्ञान अपेक्षाकृत यानी अवधि सापेक्ष है। कालिक परत्वापरत्व की उत्पत्ति इस प्रकार है अनियत देश स्थित युवक तथा वृद्ध के पिंड में यह इससे अल्पतर काल संबद्ध है यानी स्वल्पतर रवि क्रिया विशिष्ट यह शरीर है। इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि से युवक में अपरत्व कनिष्ठत्व उत्पन्न होता है जिसका असमवाय कारण काल पिंड संयोग है। यह इससे अधिक काल संबद्ध है यानी बहुतर रवि क्रिया विशिष्ट है। इस प्रकार की बुद्धि से कालिक परत्व ज्येष्ठत्व उत्पन्न होता है। वस्तुतः दैशिक परत्वापरत्वोत्पत्ति में अपेक्षा बुद्धि कारण है परंतु कालिक परत्वापरत्व बुद्धि में नहीं। इसका विवेचन काल तथा दिशा के निरूपण में विस्तार पूर्वक किया गया है। आद्य पतन का असमवाय कारण जो गुण वह गुरुत्व है वेगाधिक का द्वितीय पतन में कारण है अतः आद्य पद का उपादान किया गया है। अनुमान से वेद्य गुरुत्व का किसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष न होने पर वह अतीन्द्रिय है तथा पृथ्वी और जल में रहता है जैसा कि कहा है संयोग वेग प्रयत्न के अभाव होने पर भी पतन होता है इसलिए उसका कारण गुरुत्व ही है। तरल द्रव्य के प्रथम स्यंदन प्रसार फैलने का असाधारण कारण गुण को द्रवत्व कहते हैं। द्वितीय संदन का असमवाय कारण वेग होने से लक्षण अतिव्याप्त न हो अतः आद्य पद का उपादान किया है। द्रवत्व दो प्रकार का है सांसिद्धिक विकट में स्वाभाविक और नैमित्तिक विकट में तेजस संयोग रूप निमित्त को लेकर व्यक्त होने वाला। इनमें सांसिद्धिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक द्रवत्व लाक्षादि पृथ्वी तथा स्वर्णादि तेज में रहता है। नित्य में रहने वाला सांसिद्धिक द्रवत्व नित्य तथा अनित्य में रहने वाला वह अनित्य है, किंतु नैमित्तिक द्रवत्व अनित्य ही है। आटा मृतिका आदि के सूक्ष्म कारणों में परस्पर एक दूसरे को धारणाकर्षण जनक विलक्षण संयोग का निमित्त कारण गुण को स्नेह कहते हैं। इसी गुण को लेकर यह स्निग्ध ऐसा व्यवहार होता है। जल में ही रहने वाला यह गुण जलीय परमाणु में नित्य तथा जलीय द्रोणकादि कार्य में अनित्य होता है। अवयवगत स्नेह से अवयवी में स्नेह उत्पन्न होता है। अतः गुरुत्वादि की तरह यावत द्रव्याभावी यानी जब तक द्रव्य रहे तब तक रहने वाला उसे मानते हैं। जलीय अपकृष्ट स्नेह अग्नि का प्रतिबंधक है, इसलिए जल से अग्नि शांत होता है, किंतु घृत तैलादि निष्ठ उत्कृष्ट स्नेह अग्नि के अनुकूल सहायक है, अतः इससे अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। श्रवणेन्द्रिय से गेय जो गुण वह है शब्द, जो कि आकाश का ही विशेष गुण है। इस विषय में यह प्रश्न होता है कि अभिघात संयोग से दूरस्थ भेरियादि शब्द में उत्पन्न होने वाले शब्द को पुरुष की श्रवणेन्द्रिय ग्रहण कैसे करेगी। इसका समाधान यह है कि प्रथम भेरियादि देश में शब्द संयोग या विभाग से उत्पन्न होता है, बाद में संयोगज या विभागज शब्द विचित्र रंग न्याय विकट में जल में पाषाणादि प्रक्षेप से उत्पन्न होने वाले तरंगों के तुल्य विकट बंद या कदम्ब मुकुलन न्याय विकट में एक साथ विकसित कदम्ब मुकुल के तुल्य विकट बंद से द्वितीय शब्द को उत्पन्न करता है। वह शब्द भी शब्दांतर को इस तरह उत्तरोत्तर जातीय शब्द धारा विकट में एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति परंपरा विकट बंद चलती है। अतः भेरियादि देशोत्पन्न से जायमान अंतिम स्रोत देशोत्पन्न से जातीय शब्द ही स्रोत द्वारा गृहित होता है। निष्कर्ष यह है कि इंद्रिय संबद्ध अंतिम शब्द का ही ग्रहण होता है, न कि पहले या बीच के शब्दों का। यद्यपि भेरी शब्द मैंने सुना इस प्रकार की प्रतीति होती है, किंतु वह प्रतीति भ्रमात्मिका है। सजातीय शब्द श्रवण से ऐसा व्यवहार होता है। भेरी शब्दोत्पत्ति में भेरी और आकाश का संयोग असमवाय कारण तथा भेरी दंड संयोग निमित्त कारण है। इस तरह बांस को चीरने पर चटचटा शब्द होता है, जिसका असमवाय कारण बांस के दलद्वय और आकाश का विभाग है। बांस के दलद्वय का विभाग निमित्त कारण है। फलतार्थ यह हुआ कि आद्य शब्द संयोग या विभाग से उत्पन्न होता है, किंतु अंतिम और बीच के शब्दों का असमवाय कारण तो स्वाव्यवहित पूर्व क्षण उत्पन्न सजातीय शब्द ही है। अनुकूल वायु उसका निमित्त कारण है। जैसा कि संयोग विभाग और शब्द से शब्दोत्पत्ति होती है, ऐसा वैशेषिक सूत्रकार ने कहा है। आद्यादि सभी शब्दों का समवाय कारण एक आकाश ही है। पृथ्व्यादि भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर शब्द विलक्षण ज्ञात होते हुए भी वे उनके नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। कर्म बुद्धियादि की तरह शब्द भी तीक्ष्ण स्थायी है। इनमें प्रथम तथा मध्य के शब्द स्वव्यवहितोत्तर जायमान सजातीय शब्द से यानी अपने से जायमान शब्द से नष्ट होते हैं। अंतिम शब्द के विनाश के विषय में यह मानना है कि अंतिम शब्द उपन्यास से तथा उपांत शब्द अंत शब्द से सुंदोप सुंदर न्याय से नष्ट होते हैं। यह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि विलक्षण रहने वाला उपांत अंतिम शब्द का द्विक्षक ही है। अनुगमन करने वाला होने से अंत के तृतीय क्षण में उपांत का अस्तित्व ही नहीं है, अतः इससे अंत का नाश कहना असंगत है। परंतु उपांत के नाश से अंत भी नष्ट होता है, यही मानना उचित है। कुछ विद्वानों का इस विषय में यह मंतव्य है कि निमित्त वायु संयोग नाश ही शब्द नाश का कारण है, अतः उनके मत में शब्द चतुक्षण स्थायी है। वस्तुतः अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर योग्य विभू विशेष गुण तृतीय क्षण में नष्ट होते हैं। अतः मूल में तीक्षण पद को दीक्षण परक मानकर समन्वय करना चाहिए। कुछ मीमांसक विद्वानों का मंतव्य यह है कि शब्द द्रव्य है, क्योंकि भेरियादि देश में उत्पन्न शब्द श्रवणेन्द्रिय से सुना जाता है। श्रवणेन्द्रिय तक जाने वाले शब्द में क्रिया मान्य होगी, अन्यथा असंबद्ध उनका प्रत्यक्ष होगा ही नहीं। क्रिया का अधिकरण द्रव्य ही होता है। इस मंतव्य का भी समाधान उपर्युक्त कथन से हो जाता है, क्योंकि सुरेमान शब्द से आती तथा अव्याप्रवृत्ति है। विचित्र रंग न्याय या कदम मुकुलन न्याय से दशा विशेष में नहीं, परंतु पूर्वादि सभी दिशाओं में निमित्त वायु को लेकर गगन में ही उत्पन्न होने वाली शब्द धारा का अनुभव होता है। अतः गगन समवाय कारणक शब्द को गुण ही मानना उचित है। इस विषय में मीमांसकों का यह आग्रह है कि शब्द नित्य है, क्योंकि जिस ककार को दाता प्रसाद बोलता है उसी को ब्रिजलाल तथा भगवती प्रसाद भी बोलते हैं, ऐसा प्रतिविज्ञान होता है। तथा जिस जय हिंद का उच्चारण सिंगापुर में होता था वही जय हिंद भारत के कोने कोने में भी सुना जाता है। अतः सर्वत्र उपलब्ध होने वाले शब्द को नित्य विभू द्रव्य मानना चाहिए। इस पर न्यायिकों का यह सिद्धांत है कि यह वही औषध है। इस प्रकार की प्रतीति जिस तरह साजात्य पर आधारित है उसी तरह पूर्वोक्त प्रतिविज्ञान भी साजात्य का ही अवलंबन करता है। व्यवहार में क उत्पन्न हुआ तथा क नष्ट हुआ, इस प्रकार की प्रतीति से शब्द अनित्य है यही सिद्ध होता है। अनुमान से भी शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होता है। जैसे शब्द अनित्य है क्योंकि घट के समान जात विशिष्ट तथा हमारी बहिरेन्द्रीय से वेद्य है, यहाँ शब्द पक्ष में इनमें अनित्यत्व साध्य है, जिसका विनाशावच्छिन्न स्वरूप यानी जिसमें ध्वंसक प्रतियोगित्व वह अनित्य है, न कि विनाशावच्छिन्न सत्तावत्व, क्योंकि सत्ता रहित प्राग भाव में अनित्यत्वाभाव प्रसंग होगा। वस्तुतः ध्वंस प्रतियोगित्व या प्राग भाव प्रतियोगित्व ही अनित्यत्व है। पूर्वोक्ता अनुमान में पंचम्यंत हेतु है, उसमें बाह्य पद का उपादान न करने पर आत्मा को लेकर व्यभिचार होगा। परमाणु में भी योगी बहिरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता है, अतः अस्मदादि पद का उपादान किया है। योगी के सद्भाव में क्या प्रमाण है? उसका उत्तर यह है कि परमाण भी किसी को प्रत्यक्ष है, क्योंकि वे घट के तरह प्रमेय हैं। योगज धर्म से अतीत अनागत विषयों का ही प्रत्यक्ष होता है। योगी के अलौकिक प्रत्यक्ष में लौकिक प्रत्यक्ष सामग्री अपेक्षित नहीं है। पूर्वोक्त हेतु में सत्यंत सामान्यवत दल का उपादान न करने पर सामान्याधिक विचार होगा। अवस्थादि जाति बाधक होने से उनमें सामान्य नहीं रहता है। प्रथम व्यक्ति को किसी भी पदार्थ का प्रकाशन विकट में ज्ञान होता है, तभी तद विषय इच्छा होने पर वह उसके लिए प्रयत्न करता है। अतः मानना होगा कि सर्वविध व्यवहारों का असाधारण कारण जो गुण वह है बुद्धि ज्ञान। नित्यानित्य वेद से ज्ञान दो प्रकार का है, इनमें ईश्वरीय ज्ञान नित्य तथा जीवात्मा का ज्ञान अनित्य है। प्रथम जीवात्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का अर्थ से संबंध होने पर ज्ञान होता है, किंतु मन जब पुरीतत नाड़ी में प्रविष्ट होता है तब सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में ज्ञान उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए फलितार्थ यह हुआ कि तद व्यतिरिक्त प्रदेश में जायमान आत्म न संयोग ज्ञान का असमवाय कारण है। इस विषय में प्राचीनों का यह मंतव्य है कि उक्त प्रदेश में त्वग इंद्रिय का अभाव होने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए तंग मना संयोग को ज्ञान उत्पत्ति में असमवाय कारण मानना चाहिए। शब्द के तुल्य जीवात्मा का ज्ञान भी तृतीय क्षण में नष्ट होने से क्षणिक है, केवल अपेक्षा बुद्धि तीक्षण रहती है। अन्यथा द्वित्व प्रकार द्रव्य प्रत्यक्ष ब्रैकेट में सभी कल्पक ज्ञान होगा नहीं। प्राणी मात्र जिसकी कामना करे यानी सभी को अनुकूलतया ज्ञायमान जो गुण वह है सुख। सुख विषयक इच्छा अन्येच्छा के अधीन नहीं है, किंतु सुख साधन विषयक इच्छा सुखेच्छा के अधीन है। सुखेच्छा से सुख साधन विषयक इच्छा प्रवृत्ति चेष्टाएं होती हैं। कायिक वाचिक मानसिक प्रवृत्तियां शास्त्रानुमोदित होकर जब व्यष्टि और समष्टि के हित के लिए होती हैं तब धर्म रूप अदृष्ट उत्पन्न होता है जिससे सुख होता है, अर्थात सुख धर्मजन्य है। प्राणी मात्र जिसका द्वेष करे यानी सबको प्रतिकूलता ज्ञात होने वाला जो गुण उसको दुख कहते हैं। दुख द्वेष का विषय होने से सुख साधन का निरोध करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। अनुभव वेद्य वे दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदैविक वेद से त्रिविध हैं, जिनकी उत्पत्ति व्यष्टि और समष्टि के अहित जनक उक्त त्रिविध प्रवृत्तियों से अधर्म उत्पन्न होने पर होती है, अर्थात दुख अधर्म जन्य है। इन्हीं त्रिविधता से त्राण पाने के लिए महर्षियों की शास्त्र रचना में प्रवृत्ति हुई है। धर्माधर्म रूप अदृष्ट न होने पर ईश्वर तथा मुक्तात्मा में सुख दुख भी नहीं है। ज्ञान से उत्पन्न होकर जो गुण प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है उसे राग या इच्छा कहते हैं। ईश्वर इच्छा नित्य तथा जीवात्मा की इच्छा अनित्य है। फलेच्छा से जन्य उपाय इच्छा है। राग से ही क्रोधादिक षड रिपुगण पल्लवित पुष्पित होकर अनर्थ को उत्पन्न करते हैं, किंतु चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए शास्त्रानुमोदित तत्त साधन विषय सदिच्छा स्तुत्य है। अर्थात शास्त्र नियंत्रित इच्छा उन्नति कारक तथा अनियंत्रित अवनति जनक है। ज्ञान से उत्पन्न होकर जो गुण निवृत्ति को उत्पन्न करता है उसे द्वेष कहते हैं। उसका विषय दुख की तरह दुख साधन भी है। इच्छा या द्वेष से उत्पन्न होकर जो गुण चेष्टा विकट में हित की प्राप्ति तथा अहित का परिहार जनक क्रिया विकट बंध को उत्पन्न करता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न तीन प्रकार का है, प्रवृत्ति निवृत्ति तथा जीवन योनि। इष्ट साधनता बुद्धि से रजतादिक में राग होने पर प्रवृत्ति, दुष्ट साधनता बुद्धि से द्वेष होने पर सर्पादिक से निवृत्ति होती है। बलवत निष्ठानुबंधित ज्ञान भी प्रवृत्ति का कारण माना जाता है। जिस प्रयत्न से प्राणी में श्वास प्रश्वास रूप प्राण संचार होता है उसको जीवन योनि यत्न कहा जाता है। ईश्वरीय प्रयत्न नित्य है। जीवात्मा के बुद्धादिषट विशेष गुण का मानस प्रत्यक्ष होता है तथा वे सभी क्षणिक है। सुख दुख के असाधारण कारण गुण को क्रम से धर्म तथा अधर्म कहते हैं। वेद विहित कर्मानुष्ठान से धर्म तथा वेद निषिद्ध कर्मानुष्ठान से अधर्म की उत्पत्ति होती है। यद्यपि उनका प्रत्यक्ष नहीं होता किंतु शास्त्र द्वारा तथा विभिन्न कर्म से विपरीत सुख दुख फलानुभव से उनका अस्तित्व माना जाता है। अन्यथा पूर्व कृत कर्म निष्फल तथा अकृत कर्म के फल की प्राप्ति होगी। अनुमान से अदृष्ट की सिद्धि इस प्रकार है। जैसे देवदत्त का शरीर आदि देवदत्त के विशेष गुण से जन्य है क्योंकि वे देवदत्त प्रयत्न जन्य वस्तु की तुल्य भोग के साधन है। अर्थात शरीर आदि जनक जो विशेष गुण वही तो धर्म तथा अधर्म है। प्रयत्नादिक शरीरादिक के जनक नहीं है। कहीं स्मृति या क्रिया द्वितीय पतन स्पंदनादिक का असाधारण कारण जो गुण वह है संस्कार जो कि यह संस्कारी है। इस प्रकार के व्यवहार का असाधारण कारण है। संस्कार तीन प्रकार का है, वेग भावना और स्थित स्थापक। इनमें वेग क्रिया से जन्य होने पर भी कहीं पर क्रिया वेग पतन स्पंदनादिक का कारण होता है। नोदनाख्य संयोग से बाण क्रिया में उत्पन्न होने पर लक्ष्य पर्यंत बाण को क्रियाशील करने में वेग ही कारण है। वह प्रतिव्या चतुष्टयता मन में रहता है। उत्पन्न ज्ञान क्षणिक होने से तृतीय क्षण में नष्ट होता है परंतु वह अनुभव अपने संस्कार को उसी आत्मा में छोड़ जाता है। उद्बोधक पाने पर जो संस्कार स्मृतिजनक है उसी को भावना के संस्कार कहते हैं। अर्थात अनुभवादि ज्ञान जन्य स्मृति जनक संस्कार ही भावना है जो आत्मवृत्ति है। भावना संस्कार न मानने पर पूर्व अनुभूत विषय का स्मरण नहीं होना चाहिए, यह आपत्ति है, अतः उसका स्वीकार किया गया है। सदृश वस्तु के दर्शनादि रूप सहकारी कारण सामग्री से उद्बुद्ध संस्कार स्मृति जनक है। वह संस्कार सामान विषयक अंतिम स्मृति से नष्ट होता है। स्मृति से संस्कार उत्पत्ति मानने वाले समान विषयक स्मरण से उसका नाश मानते हैं। कहीं पर काल रोग आदि से भी संस्कार का नाश होता है। अन्यथाभूत वस्तु को पूर्ववस्थापन करने वाला जो संस्कार वह स्थित स्थापक है। जैसे धनुषादि अन्यथाभूत होकर के पुनः पूर्ववस्था में आ जाते हैं वही प्रतिव्यादि भूत चतुष्टय में रहता है। संक्षेप में यह गुण निरूपण समाप्त हुआ।